भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाया तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अपार कृपा से स्कान स्थापना के 91 साल उसके अंतर्गत विश्व भर में ग्रंथराज श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप का प्रचार विश्व के विभिन्न भाषाओं में हो रहा है और आज 7वें दिन के इस श्रीमद् भागवत के सत्संग में जो स्कान झांसी के भक्तों की प्रेरणा से सविता देवी और श्रीमान परशुराम जी अग्रवाल और परिवार संबंधी उसने मिलकर जो ये आयोजन किया है उसकी पूर्ण आहुति का समय है, ये वेला है। वैसे समापति शब्द का अर्थ बंद होना नहीं होता है, खत्म होना नहीं होता है, सम्यक प्राप्ति। सम्यक प्राप्ति का मतलब जो हमने 7 दिवन में सुना है वो हमको अच्छी तरह से प्राप्त हो, वो हमारे जीवन में सार्थक हो, ये समाप्ति की परिभाषा है। सम्यक प्राप्ति, सम्यक का मतलब अच्छी तरह से, प्राप्ति का मतलब जो हमने सुना है वो हमको हम ग्रहण करें, उसको हमारे हृदय में उतारें और हमारा जीवन सफल हो। तो कल हम दसम स्कंद श्रीमद् भागवत में भगवान के बाल लीलाओं का श्रवण वर्णन कर रहे थे। जो वात्सल्य प्रेम के भक्त है, भगवान को अपना लाला बाला बाल समझते हैं, कैसे भगवान से प्रेम करना चाहिए और भगवान कितना सुख देते हैं, उनके प्रेम से बंध जाते हैं। जिसको ब्रह्मा बांध नहीं सकता है, जो उनके अंग से उत्पन्न होता है, लक्ष्मी बांधने का साहस नहीं कर सकती है, जो उनके चरणों के ऊपर सदा बैठी होती है और छाती के ऊपर श्री वत्स का चिन्ह है, भगवान शंकर सदा समाधि में लीन रहते हैं, वो भी भगवान को बांधने का साहस नहीं कर सकते हैं। ये जो गोपी यशोदा ने भगवान को बांधा है, इनको गोपियां इसलिए कहते हैं, एक तो वो इंद्रियों से गो इंद्रियों को कहते हैं, और पीने का मतलब भगवान की सुंदरता का, भगवान के मुस्कुराहट, मंद मंद मुस्कुराते हुए रूप का, भगवान की मधुर वाणी का इंद्रियों से पान करती हैं, आंखों से कानों से भगवान का दर्शन का, भगवान के शब्द ध्वनि का, भगवान के नृत्य का पान करती हैं, इसलिए उनको गोपी कहते हैं। और दूसरा गोपी का असल में भाव ये है कि भगवान तो मथुरा से गोकुल में छुपने के लिए ही तो गए थे कि कंस को पता ना लगे, तो गोपियों ने भगवान को गोपनीय रखा, छुपा के रखा, भगवान की भगवत्ता को प्रकट होने ही नहीं दिया। कभी चलो भर छाछ के ऊपर नचा रही हैं और कभी बांध रही हैं, तो कंस कहेगा ये मेरा क्या कर सकता है, जिसको गोपियां बांध रही हैं वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो गोपियों ने तो भगवान को गुप्त करके रख दिया, तो गोपनीय रखने वाली गोपियां हैं। तो ये गोपियां कोई साधारण मानव स्त्रियां नहीं है, भगवान की परिकर है सारी। तो बाल सुख का, बाल लीलाओं का सुख भगवान ने गोकुल में दिया, और ब्रज में वत्सपाल और गौपाल के रूप में सखाओं को सुख दिया, और अघासुर की लीला से ये सिद्ध होता है कोई पाप के मुंह में चला जाए लेकिन कृष्ण का मित्र है तो कृष्ण पाप के पेट से भी उसको निकाल के वापस ला सकता है। ऐसा कोई संसार में नहीं है कि पाप के पेट में पड़े हुए दुख भोगते हुए को निकाल सके। और फिर भगवान की गोवर्धन लीला में भगवान ने भक्त की महिमा देवताओं के महिमा से अधिक बताई। इंद्र देवता के पूजा को बंद करा के गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा गया है, हरि के दासों में जो श्रेष्ठ है। भागवत में तीन हरिदास वर्य है, एक उद्धव, एक युधिष्ठिर महाराज और एक गोवर्धन, इनको सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्तों की संज्ञा दी गई है। तो भगवान ने देवता पूजा से भक्त की पूजा को ज्यादा महत्व दिया, और अगर संकट आता है तो भगवान पर्वत उठा के भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दुनिया में दुख आने के ऊपर दुख का पहाड़ लोगों पे गिरता है तो कोई पहाड़ नहीं उठाता है, ये तो एक ही है, संकट आने के ऊपर गोवर्धन को धारण करके पूरे ब्रज की रक्षा की है। तो पर्वत को उठा के अपने सगे संबंधियों का, मित्रों का, सखाओं का रक्षण करने वाला भगवान, इससे ज्यादा और कौन दयालु मिलेगा। तो गोवर्धन लीला में अब हम आज की कथा तो रासविलास की लीला से आगे चल के मथुरा चलेंगे और द्वारका चलेंगे। तो रास का मतलब होता है रस, और भगवान है रस राज। वैसे भगवान को सच्चित आनंद कहते हैं, हम जानते हैं सत्य में तो भगवान की स्थिति होती है, भगवान का धाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है। और चित्त का मतलब ज्ञान, और भगवान की चित्त की अभिव्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में देते हैं, अथवा उद्धव को जो गीता का ज्ञान दे, ये भगवान के चित्त की अभिव्यक्ति है। लेकिन भगवान के आनंद की अभिव्यक्ति रास विलास में होती है, जिसमें रास का विहार होता है। तो ये रास है क्या, किसके संग भगवान रास करते हैं? तो यहां भगवान की दो लीलाओं को भागवत में वर्णित किया हुआ है, एक सृष्टि लीला और एक रास लीला। सृष्टि लीला भगवान की जीवों को प्रलय काल में सोए हुए जगाकर और एक और अवसर दिया जाता है कि अपने जन्म को सार्थक करें, यह भगवान की सृष्टि लीला, ये उत्पत्ति लीला है। और दूसरी रास लीला है जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके संग भगवान आनंद का विहार करते हैं। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, श्री कृष्ण भगवान तो आदि पुरुष है स्वयं भगवान, उनसे उनके सीधे हाथ की तरफ से पहले बलराम जी का विस्तार होता है और बलराम जी पांच में विभाजित होकर सृष्टि लीला का कार्य करते हैं। तो भगवान तो हो गए आनंद में, अब बलराम जी आगे जाके सृष्टि करते हैं विष्णु के द्वारा, और वैकुंठ में जितने विष्णु हैं ये संकर्षण से चतुर्व्यूह वसुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न ये संकर्षण ये चतुर्व्यूह से सारी विस्तार होते हैं, विष्णु बनते हैं, अवतार होते हैं, ये सब गर्भोदक्षाई से आते हैं। तो इस तरफ सृष्टि हो गई और वाम भाग से भगवान राधा रानी को प्रकट करते हैं। गोलोक में भगवान के मन में रास विहार करने का संकल्प हुआ, भगवान के वाम भाग से एक बहुत सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई, भगवान ने प्रेम से उसको निहारा, वो आनंद में मगन होके एक सुंदर फूल लेकर भगवान के चरणों में अर्पित किया, दौड़ के फूल लेने गई तो धावता हो गया और भगवान को फूल अर्पण किया तो आराधना हो गई, उसका नाम हो गया राधा। तो राधा कोई स्त्री नहीं है, कोई लड़की नहीं है, राधा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से प्रकट भगवान की हलादिनी शक्ति है जो भगवान को आनंद देती है और भक्तों का पोषण करती है। जैसे सारे अवतार गर्भदक्षाई विष्णु से आते हैं, ऐसे राधा रानी का काया विहू सारी गोपियां हैं। काया, काया कहते हैं शरीर को, तो राधा रानी ही असंख्य गोपियों में विस्तृत होके भगवान को रास का आनंद देती है। अब राधा भगवान के अंग से निकली, उसी का ही काया विहू विस्तार है, एक से अनेक वो गोपियां हैं। और राधा रानी के प्रतिबिंब के रूप में भगवान की द्वारका की रानियां हैं, और राधा रानी रानी का प्रकाश है वैकुंठ में लक्ष्मियां। तो लक्ष्मी लक्ष्मियां, एक वैकुंठ एक नहीं है, असंख्य वैकुंठ है, वैकुंठों की गिननी नहीं, गिनती नहीं की जा सकती। और भगवान के हाथ में अगर चक्कर सीधे हाथ में ऊपर है तो नाम हो गया वासुदेव समझ लो, और ऊपर हाथ में गदा है सीधे हाथ में तो नाम मधुसूदन हो गया। तो जैसे चार आयुध बदलते हैं ऐसे अलग भगवान के नाम है, भगवान का नाम वसुदेव है, माधव है, जनार्दन है, ऐसे अलग अलग नाम वैकुंठ में अलग आयुधों से है। तो वैकुंठ में लक्ष्मियां अनंत है, सहस्र लक्ष्मी लिखा है, सहस्र लक्ष्मी हजारों लक्ष्मियां एक नहीं। तो ये सारी राधा रानी का विस्तार है। तो पहले तो इनको कोई सामान्य लड़की स्त्री समझना ये मूर्खता है, और दूसरा रास विहार के समय भगवान की सामाजिक मानव दृष्टि से आयु 10 वर्ष की भी नहीं है, 9 वर्ष की है, 9 वर्ष और कुछ दिन की है, कुछ महीनों की है। तो इस उम्र के बच्चे आज भी लड़कियों के साथ नृत्य करते हो तो उसके ऊपर संसारी दृष्टि से कोई उंगली उठाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो भगवान तो 11 साल से पहले ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए, तो इसलिए सब बातों को समझना चाहिए। आज भी ये लड़के लड़कियां इस उम्र में विशेष रूप से गांव के अंदर, जैसे जैसे अभी आजकल तो ये थोड़ा सा विकृति हो गई है, नहीं तो रामनामी के समय में 9 दिन राम कथा होती थी, अब उसकी जगह पे जो है वो दुर्गा पूजा हो गई। तो ऐसे जब विजयदशमी आती है दिवाली से पहले तब भी राम कथा होती थी, रामलीला ग्राउंड अभी तक बने हुए पूरे भारत के अंदर, लेकिन उस वक्त में गरबे करते हैं, लड़के लड़कियां नृत्य करते हैं, ये तो सामान्य अभी भी ये प्राचीन जो परंपराएं दिख रही हैं। तो अब रास लीला की भूमिका से पहले कल हम आपको ये श्रवण करा रहे थे कि भगवान ने पहले ब्राह्मणों को अनुकूल किया, क्योंकि निर्णय देने वाले ब्राह्मण होते हैं कि शास्त्र में उचित है कि अनुचित है। तो जो चतुर्वेदी ब्राह्मण मथुरा के थे, यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भगवता को स्वीकार किया, अपने पत्नियों को भगवान की भक्ति के कारण प्रणाम किया, और दूसरे नंबर पे भगवान ने देवताओं को अनुकूल किया। इंद्र देवता का अहंकार या मान, जो उन्होंने मान किया था, क्रोध किया था, उसका शमन करके इंद्र प्रार्थना करके गया। तो इंद्र देवताओं का देवराज है, तब इंद्र अनुकूल हो गया। उसके बाद भगवान ने बड़े गोपों को और नंद बाबा को वरुण लोक का और वैकुंठ का दर्शन करा के अपनी महत्व का, भगवता का दर्शन कराया। वैसे भी जहां जहां भगवान ने कोई अद्भुत कार्य किया है, जैसे गोवर्धन उठाने के समय व्यास देव ने लिखा है और सुखदेव ने कहा है, भगवान ने गोवर्धन धारण किया, और रासलीला से पहले भी भगवान अपि, ये भगवान का शरद रात्रि, उस रात्रि को किसने यह लीला की, भगवान ने की। भगवान शब्द पहले कहकर इस लीला को मानव से विलक्षण कर लिया, और ये अलौकिक लीला है। भगवान की लीला सामान्य मानव जैसी नहीं है, उन लीला का रसास्वादन किया जा सकता है, अनुकरण नहीं किया जा सकता है। अब रास लीला की भूमिका तैयार हो गई। गोपियों ने कात्यायनी देवी के व्रत में देवी को प्रार्थना की थी कि नंद सुतः गोपाल हमको पति के रूप में प्राप्त हो, और भगवान आवरण भंग चीरहरण लीला में गोपियों को वचन दिया था कि आने वाली शरद ऋतु में आ रास विहार करेंगे। और आपको ये भी ब्रह्मा विमोहन लीला में बताया जा चुका है कि सांडिल्य मुनि के और गर्ग ऋषि के, सांडिल्य मुनि के प्रेरणा के ऊपर, जब एक वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण सब गोप बने हुए थे, तब सब नवयुवक गोपियों का विवाह उन गोपों के साथ हुआ जो श्री कृष्ण था, इसलिए रासलीला में गोपियों को कृष्ण वधू कहा गया है। और अब रासलीला कैसे होती है? रासलीला काम के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है। कामदेव एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास आया और कहा कि वैसे तो मैं शंकर को समाधि में विचलित कर चुका हूं, अब मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, कौन सा युद्ध करोगे, दुर्ग में युद्ध करोगे क्या, खुले मैदान में? बोला, दुर्ग का युद्ध क्या होता है? बोला, मैं समाधि में बैठा हूं, मेरे को आप विचलित किए। बोला, मैदान का युद्ध क्या है? बोला, मैं रासलीला करता हूं और आप मेरे ऊपर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कीजिए। तो कामदेव ने कहा, बहुत सारे पहले दुर्ग के युद्ध किए हैं, शंकर तक को विचलित कर चुका हूं, इस बार मैदान का युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कहा, ठीक है। और भगवान ने टेढ़े खड़े होकर बांसुरी बजाई और कामदेव ने 5 पुष्प बाण लेके आक्रमण करने के निशाने के लिए कृष्ण की ओर देखा, और देखते ही मूर्छित हो गया। तो भगवान ने कहा, अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी तुम्हारा ये हाल है, तो युद्ध में तुम क्या करोगे? तो भगवान का नाम है, कामदेव को कहते हैं मदन, और कृष्ण का नाम है मदन मोहन, जो मदन को मोहित कर ले। तो कामदेव वहां से चला गया, भगवान ने बांसुरी बजाई, एक एक गोपी को अपने घर से नाम लेकर बुलाया। ये भगवान की बांसुरी असल में जिसका नाम ले लेते ललिते, तो ललिते का ही केवल उसको पता लगता था, और किसी को नहीं पता लगता था। हे राधे तो राधा आती थी, विशाखा तो विशाखा आती थी, तुंग तुंग विद्या तो तुंग विद्या आती थी। हर एक गोपी को भगवान ने, शरद की राती है, चंद्रमा निकला है, और श्री अपनी माया का सहारा लिया है, या माया का अर्थ है भगवान राधा के सहारे केवल रासलीला करते हैं, और रासलीला की अनुमति भी राधा जी से लेते हैं, तब रासलीला शुरू होती है। वो तो रासेश्वरी है, ब्रजेश्वरी है। सो भगवान ने बांसुरी बजाई और जो गोपियां जिस कार्य में थी, गाय दुहरी तो उधर ही छोड़ दिया, कोई भोजन परोस रही थी तो उधर छोड़ दिया, कोई श्रृंगार कर रही थी, काजल एक आंख में डाला तो उधर छोड़ दिया, और कोई आभूषण नाक में डाल रही थी और जल्दी में नाक का कान में डाल दिया, हाथ का पांव में डाल दिया, जैसी थी वैसे चल के भागती हुई भगवान जहां ये जो बड़ी महारास हुई है ये बंसी बट पे हुई है, जमुना जी के दूसरे तट पे बंसी बट पे सब गोपियां वहां पहुंच गई। जैसी गोपियां थी जैसे हाल में थे वैसे पहुंच गई। भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे ही चल के मेरे पास आओ। सुंदर बन के पूतना गई तो प्राण गंवाया। सुंदर बन के कौन गई थी? रावण की बहन सुरपंखा गई थी नाक कटवा के आई। तो सुंदर बन के जानने की जरूरत नहीं है, नाक कान कटवाने पड़ते हैं नहीं तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। जैसे हैं वैसे चले जाओ भगवान के पास, क्योंकि वो तो हृदय को देखता है, बाहर के रूप को नहीं देखता है, बाहर के बनावट को नहीं देखता है। गोपियां वहां पहुंची। अब क्यों गोपियों के हृदय में कामदेव बैठ के चला गया? क्योंकि गोपियों के लिए शब्द लिखा है कामाद गोपिया, गोपियों में काम का भाव आ गया। अब गोपियों का काम संसारी काम जैसा नहीं है, वो प्रेम का परिकाष्ठा का स्वरूप है। लेकिन भगवान ने देखा कि ये गोपियों के हृदय में कामदेव बैठ के आ गया है, तो भगवान ने कहा ऐसी इनके हृदय में विरह की आग जलाऊंगा कि कामदेव इनके हृदय में जल के भस्म हो जाएगा। अब भगवान कहते अच्छा सुंदरियां आप चांदनी रात में वन का दर्शन करके आने के लिए आई है? बड़ी देखो सुंदर जमुना कैसी चांदी जैसी चमक रही है। हाँ हाँ दर्शन कर लो, अब जाओ घर अपने, तुम्हारे पति प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाना है और सास ससुर की सेवा करनी है, गैया का दूध निकालना है, जाओ अपने घर। आश्चर्य है, पहले तो बुलाया है और आप कह रहे हैं अपने घर जाओ। भगवान धर्म का उपदेश दे रहे हैं भाई, परिवार का पालन करना, वर्ण आश्रम धर्म में पति की सेवा करना, बच्चों पालना, ये तो धर्म है। तो भगवान तो दे रहे हैं धर्म का उपदेश। और गोपियां हैं सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, गोपियों की कक्षा है सर्वधर्म परित्यज। अब गोपियों को बहुत पीड़ा हुई कि ये तो बहुत बड़ी बात है, घर में बुला के पहले बुलाया बोलते वापस जाओ। तो जो काम हृदय में बैठा था ना, वो गोपियों के हृदय में जो अब पीड़ा होने लगी ब्रह्मी, वो काम अंदर जलने लगा, वो काम ऐसा भुन गया कि काम भाग गया वहां से। तो कामदेव की यहां क्या हो गई? पराजय हो गई कामदेव की। फिर भगवान ने कहा सुन बेटा, तुम्हारे को तो शरीर ही मेरे पुत्र में प्रकट हो, पुत्र बन के प्रकट हो गए तब मिलेगा। तुम्हारा शरीर तो भोलेनाथ ने भस्म किया था और तुम्हें वापस शरीर मेरे पुत्र के रूप में, इसलिए बेटा अब जाओ। कामदेव को भगवान ने कहा बेटा अब जाओ, तब कामदेव वहां से चले गए। और फिर रुक्मणी के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है, उसको वापस शरीर भगवान श्री कृष्ण के घर में रुक्मणी से जब प्रकट हुआ है तब कामदेव का कल्याण हुआ है। अब गोपियों ने अपने प्रेम का जो गीत गाया है, ये गोपियों का दूसरा गीत है भागवत, पहला वेणु गीत है और दूसरा ये प्रणय गीत है। प्रणय गीत का प्रणय एक स्तर, हमारे को तो केवल प्रेम शब्द का पता है, प्रेम से ऊपर होता है स्नेह, स्नेह से ऊपर होता है मान, मान के बाद होता है प्रणय। मान में जिससे बहुत ही प्रेम होता है ना, उसके ऊपर क्रोध किया जाता है। तो मान प्रेम के अति प्रेम के कारण जो क्रोध होता है उसको मान कहते हैं, नाराज होकर रूठ के बैठ जाना, और जिसको मनाने के लिए प्रयास करना इसको मान कहते हैं। इसके बाद होता है प्रणय, और प्रणय का मतलब है प्रेमी में और प्रेमिका में कोई अंतर नहीं रह जाए, दोनों बराबर हो जाए, इसको प्रणय कहते हैं। इसलिए राधा के लिए शब्द लिखा है राधा है कृष्णेर प्रणय विकार अलादीनी शक्ति। राधा क्या है? कृष्णेर प्रणय विकार। जब कृष्ण राधा में अंतर नहीं रह जाता है तब राधा कृष्ण से आनंद करने के लिए अलग प्रकट होती है, और वो दोनों मिलके वापस चेतन महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये कथा आगे बताते हैं, इसी रास लीला का प्रसाद ये है। अब प्रणय गीत जब गोपियों ने गाने लगी तो गोपियों ने एक उदाहरण दिया जो सामान्य संत के संतों के मुख से सुना है। गोपियां कहती हैं आप कहती हैं हम जाके अपने पति की सेवा करें, बहुत अच्छी बात कहती हैं, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, हे नंदलाल हे यशोदा के दुलाल, जरा ये तो बताओ किसी पत्नी का पति परदेश गया हुआ हो, पति बड़ी पत्नी बड़ी पतिव्रता हो, अपने पति का बहुत सुंदर चित्र बनाए और फोटो घर में रखे, उसको भोजन खिला के फिर खाए, उसको रोज सुबह पूजा करके फिर खाए। बोले ये तो बड़ी पतिव्रता है, बहुत अच्छी है। अब ये बताओ कन्हैया कि जब उसका पति दरवाजे के ऊपर आए और दरवाजा खटकाए, तब उसको उस फोटो की पूजा करनी चाहिए कि पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? तो कन्हैया ने कहा पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए, अब फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है, पति आ गया है। तो बोला यही तो हम कह रहे हैं, अब आप पति मिल गए हैं तो उन फोटुओं की पूजा क्या करें जो घर में छोड़ के आए, अब वो तो मूर्तियां हैं, अब उन मूर्तियों की क्या पूजा करें, आप ही तो पति हो। और जैसे मीरा ने कहा हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाही कोई, और दूसरा कोई पति तो है नहीं, वो पति वो है जो नित्य रहे, जिसके अंदर कभी परिवर्तन न हो। अब तो भगवान ने गोपियों के इस प्रणय का मतलब उस अति प्रेम के 8 स्तर है, प्रेम के बाद ऊपर 8 स्तर है, प्रेम के नीचे 8 स्तर है। ये 14 लोक में जैसे 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर है ना, शुरू होता है श्रद्धा से। श्रद्धा आपकी हुई, आप यहां आए तो साधुओं का संग हुआ, अब आपको भगवान के स्मरण करेंगे तो अनर्थ चले जाएंगे, तो निष्ठा हो जाएगी, अरे ये रास्ता अच्छा है, भगवत प्रेम का रास्ता अच्छा है। और निष्ठा के बाद रुचि, आपको इसमें रुचि होने लगेगी, और रुचि के बाद आसक्ति आएगी। इसके बगैर जैसे व्यसन होता है किसी का, कथा का व्यसन हो जाएगा, नहीं सुनेंगे तो रह नहीं पाएंगे, जप का व्यसन होगा, जप रह गया तो नींद नहीं आएगी, भोजन नहीं पचा लगेगा। आसक्ति के बाद हम सब के अंदर जो भाव भगवान ने भर के रखा है, प्रेम भर के रखा है, वो अपने आप प्रकट होता है। और भाव के स्तर के ऊपर आंखों से आंसू बहने लगते हैं, भगवान की कथा सुनते हुए रोमांच होता है, कभी कभी नृत्य करने लग जाते हैं, तो ऐसे अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं। और भाव जब परिपक्व अवस्था को पहुंचता है, और ये भाव भगवान की राधा रानी की हलादिनी शक्ति की कृपा से प्रकट होता है। ये भाव हमारे हृदय में है, लेकिन कोई महात्मा संत भगवान की संवित शक्ति और हलादिनी शक्ति जब किसी के हृदय में किसी संत महात्मा भगवान के प्रेमी रसिक भक्त के द्वारा प्रकट करती है, तब भाव का उदय होता है। और जैसे भाव का उदय होता है, एक क्षण भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कहीं लगा नहीं सकता है, समय नहीं व्यर्थ गंवाता है कहीं, और भगवान उसकी ओर भगवान आकर्षित हो जाते हैं, वो अति उसको आनंद आने लगता है जीवन में, सादा आनंद, घनीभूत आनंद का अनुभव होता है। तो ये प्रेम के बाद होता है स्नेह, स्नेह के बाद मान, मान के बाद प्रणय, प्रणय के बाद अनुभव, अनुभव के बाद महाभाव, मोदन, मादन। और राधा रानी महाभाव स्वरूपा, मदाख्यान भाव, जिसके लिए भगवान कृष्ण भी विचलित होते हैं कि इसको आनंद क्या मिलता है मुझसे मिलने में, क्या मेरे रूप में ऐसी सुंदरता है कि ये सुख पाती है। तो भगवान ये समझ नहीं पा रहे, कृष्ण यहां सर्वज्ञ भगवान राधा रानी के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। तो ये प्रेम के जो ऊपर के स्तर है, अब प्रणय के स्तर पे गोपियां हैं, तो भगवान ने सबके साथ रास व्यहार किया। ये भगवान ने एक एक गोपी के, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, और हर गोपी समझती है कृष्ण मेरे साथ रास व्यहार कर रहे हैं। पहले तो सब कृष्ण की बड़ी प्रेम से प्रार्थना कर रही थी, कृष्ण के प्रेम में मस्त थी, और जब उन्होंने अपनी ओर देखा कि कृष्ण मैं सौभाग्यवती हूं, कृष्ण मेरे संग ही रह, उस वक्त कृष्ण ने देखा कि अब इनको अपने थोड़ा सा भाव आने लगा है कि हम भाग्यशालिनी हैं। और वैसे राधा रानी को ये पहली वाली महारास अच्छा नहीं लगी, क्योंकि सब प्रकार की गोपियां इसमें थी, गोपियों के 4 पक्ष हैं। एक पक्ष वाम भागिनी गोपी हैं, जो कहती है कृष्ण हमारा है, जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, ये है राधा रानी का पक्ष। इसमें ललिता इनकी मुख्य सरदार है। दूसरा है हम कृष्ण के हैं, ये राइटिस्ट, और इसकी चंद्रावली सखी जो है वो महान है। कृष्ण, हम कृष्ण के, जैसे कृष्ण कहेंगे वैसे करेंगे, राधा रानी कहेंगे कृष्ण हमारा है, जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे। और बाकी दो है, एक राधा रानी के पक्ष में तो हैं, लेकिन चंद्रावली से सुहृद गोपियां हैं, उससे मैत्री है, और एक है चंद्रावली की पक्ष की, लेकिन कृष्ण राधा रानी की तरफ ऐसे है, उसको कहते हैं तटस्थ गोपियां। ये है नित्य सिद्ध गोपियां। और दंडकारण्य के ऋषि गोपी बन के आए हैं, जो राम जी को सीता के संग में प्रेम करते देखा कि हमारी तपस्या तब पूरी होगी जब हम आपसे प्रेम करेंगे। भगवान ने कहा एक पत्नी व्रतधारी मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, आप सब कृष्ण अवतार में गोपियां बन के आए, इनको कहते हैं ऋषि गोपियां। एक सिंधु नरेश की पुत्रियां थी जो सब भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, वो सब गोपियां बन के आई है। मिथिला की राम के साथ सब प्रेम करने वाली स्त्रियां गोपियां बन के आई है, उसको मैथिली गोपियां कहते हैं। वेद की ऋचाएं गोपियां बन के आती हैं, उसको श्रुति गोपियां कहती हैं, कहा जाता है। तो ऐसे गोपियों की बहुत श्रेणियां हैं, लेकिन महारास जब हुआ तो सब प्रकार की गोपियां उसमें आई। एक रास गोवर्धन में होता है जहां केवल सुपक्षियां गोपियां आती है, राधा रानी के पक्ष की आती हैं, दूसरी नहीं आ सकती हैं वो रास। और फिर राधा कुंड के ऊपर जब राधा कृष्ण का मिलन होता है और कोई नहीं आ सकता है वहां। गोवर्धन में फिर भी ग्वाल जा सकते हैं, गोप जा सकते हैं, लेकिन उधर कोई नहीं जा सकते। तो बहुत स्थानों पर रास होती है, एक रास नहीं हुई है। लेकिन इस महारास में भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि राधा रानी को अच्छा नहीं लगा, तो राधा रानी के संग कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए रास से। अब तो सब गोपियां बहुत बड़ी वृहग्रस्त हो गई, कहां चले गए कृष्ण इतना आनंद के बीच में से। अरे अकेले नहीं गए, ढूंढने लगी वन में तो दो पांव दो व्यक्ति, अरे अकेले नहीं है, किसी के संग गए हैं। अरे किसी के संग गए हैं तो आगे देखा कि एक स्थान पे कृष्ण के पांव धंसे हुए हैं धरती के अंदर, दूसरे पांव नहीं दिख रहे। अरे लगता है यहां जिस प्रेमिका के साथ गए हैं उसको कोई फूल चुनने के लिए कंधे के ऊपर चढ़ाया है। अब राधा रानी ने देखा कि सारी गोपियां, वो मेरा ही तो विस्तार है, भगवान के वृह में बड़ी दुखित हैं। तो राधा रानी के मन में विचार आया कि उन गोपियों का ये ब्रह कैसे दूर किया जाए। बोला कह नहीं, अब मुझसे चला नहीं जाता, बोला फिर मैं क्या करूं, अब वन के अंदर तो कोई और साधन नहीं है, कंधे पे चढ़ाऊं। बोला हां, तो भगवान नीचे बैठे और राधा रानी कंधे के चढ़ने के लिए ऊपर पांव किया, तब तक कृष्ण अदृश्य हो गया। अब राधा रानी यहां विलाप कर रही है, तब तक सब गोपियां आ गई। अब गोपियों ने देखा कि जिसके साथ गया था वो भी हमारे साथ हो गई, तो किसी के प्रति कोई अब भाव दूसरा रहा नहीं, अब सब गोपियां साथ हो गई। अब सब गोपियों को प्रणय, अब सब गोपियों को क्या हो गया, इसको कहते हैं सारी गोपियां कृष्ण का अभिनय करने लगी प्रणय में। एक गोपी कहती डरो मत, क्या करेगा इंद्र, देखो मेरी, मैंने गोवर्धन उठा लिया, अपनी चुंडी को ऐसे ऊपर खड़ा कर दिया। कुछ कहती है देखो पूतना का मैंने वध कर दिया। तो सारी गोपियां कृष्ण की लीला का अनुकरण कर रही है, वो कृष्णमय हो गई, इसका अर्थ है कृष्णमय सब गोपियां हो गई। और फिर गोपियों ने देखा कि अंधेरी रात में कहां ढूंढेंगे, घर नहीं गई, और गोपियों ने गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। जिस गीत में गोपी पहले कहते हैं दासियां हैं आपकी, फिर कहते हैं आपके सखा हैं, फिर कहते हैं आपकी प्रेमिकाएं हैं, सारे रसों की बहुत सुंदर इस गोपी गीत में गोपियों ने जैसे गोपी गीत गाया, भगवान उनके बीच में प्रकट हो गए। ये तीसरा गीत है भागवत में, पांच गोपियों के गीत हैं, भागवत में पांच गोपियों के गीत हैं, जिसका नाम ही गोपी गीत है। जैसे गोपियों ने ये गीत गाया, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीड़ितम कल्म शाप हम, ये तो भगवान के प्यारे भक्त गीय कथा करके, और जैसे कहा कृष्ण प्रकट हो गए और सारी गोपियां प्रश्न, कहीं गए तो गए नहीं थे, वहीं थे, दिख नहीं रहे थे। जैसे कृष्ण दिखने लगे गोपियों ने पकड़ लिया चारों ओर से, और जो रोई थी, जो अपना आंसू साफ किया था, नाक साफ किया था, वो सब चुनरी बिछाई जमुना जी के तट पे, उसके ऊपर आसन के ऊपर भगवान को विराजमान कर दिया। गोपियां चारों ओर पकड़ के बैठी कहीं जाए ना, और फिर वार्तालाप होने लगी। और गोपियां पूछती हैं कन्हैया कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जिससे प्रेम करो तो वापस प्रेम करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे प्रेम करो तो वापस प्रेम करते ही नहीं। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिससे प्रेम करो या न करो उनको पता ही नहीं लगता है। तो आप बताओ ये कौन होते हैं? बोले जो प्रेम, आप प्रेम करो सामने वाले को, प्रेम करे न करे ये तो माता पिता होते हैं, बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, बच्चे करें ना करें लेकिन उनके प्रेम में कोई कमी कभी नहीं आती। आप प्रेम करो और सामने वाले को पता ना लगे, ये तो साधु मंत महात्मा ऐसे होते हैं समाधि में, उनको पता ही नहीं है कौन आया कौन गया, कौन प्रेम करता है कौन नहीं करता है। लेकिन आप प्रेम करो और सामने वाला आपकी ओर देखे ही नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा कृतघ्न होता है। तो अब गोपियां सब हंसती, एक दूसरे को देख के हंसती हैं, बोला बताओ तो ये कन्हैया कौन है? ये कन्हैया को साधु समाधि वाला तो है नहीं, हम इससे इतना प्रेम करती है और ये हमारे प्रेम के बीच में चल के अदृश्य हो गया, ये कृतघ्न है, ये तो उसके उस श्रेणी में आता है। अब कन्हैया अपना दुपट्टा गले में डालकर हाथ जोड़ के कहते हैं गोपियां ऐसे मत कहो, मैंने आपका प्रेम जो बाहरंग था उसको अंतरंग करने के लिए मैं अदृश्य हो गया ताकि ये वृह आपके प्रेम को पक्का करे, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है, घर परिवार छोड़ा है, कुल मर्यादा छोड़ी है, धर्म के मर्यादाएं छोड़ी है, इसका तो मैं ब्रह्मा के जीवन तक भी सेवा करके ऋण उतार नहीं सकता हूं, न पारे हम, मैं आपका ये ऋण उतार नहीं सकता हूं गोपियां। भगवान ने जब ये कहा कि मैं आपका ऋण उतार नहीं सकता हूं गोपियां, तो भगवान ने फिर गोलोक में बैठे सोचा कि गोपियों का ऋण कैसे उतारूं मैं। गोपियों ने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बंधन सब छोड़े, तो भगवान श्री कृष्ण राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु होके प्रकट हुए और उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, माता छोड़ा, संबंध छोड़ा और गली गली में हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ऐसे प्रेम से गाया। तो चैतन्य महाप्रभु गोपियों के ऋण से उऋण होने के लिए ये भक्त के भाव में अवतार लेकर आए थे। तो गोपियों के इस रास विहार का प्रसाद हम कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए, कलयुग अवतारी गौर हरि पतित पावन गौर हरि, ये कलयुग अवतार है, ये पीत वर्ण का अवतार है। और ये पहचाना कैसे जाएगा? 11 स्कंद में आता है, ये पहचाना जाएगा मृदंग और खड़ताल उठा के और हरि नाम संकीर्तन करते हुए, बुद्धिमान व्यक्ति इसको पहचान पाएंगे। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर उस पूर्णमासी को महारास हुआ है, तो ऐसे ये रास के 5 अध्याय भागवत का प्राण है, जिसमें प्रेमी भक्तों के संग भगवान ने प्रेम को कैसा किया है, अंतरंग किया है। क्यों किया है ऐसे भगवान ने? क्योंकि अब 100 साल तक कृष्ण वृंदावन से चले जाएंगे, तो 100 साल तक कृष्ण जो जाएंगे, गोपियों के अंदर ऐसा प्रेम पक्का हो गया है उनको कृष्ण की जुदाई का अनुभव ही नहीं होगा। तो प्रेम को पक्का करने के लिए भगवान ने यह लीला की है, कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, गोपियों के प्रेम को पक्का करने के लिए इस लीला का यहां उल्लेख है। इस लीला के बाद भगवान को अब मथुरा जाना है, उससे जाने से पहले 3 असुरों का विशेष रूप से वध करते हैं। एक केशी का वध करते हैं जो घोड़े के रूप में आता है, ये घोड़े वाले सर वाला हाईग्रीवा एक बार वेद चुरा के गया था, तो भगवान ने इसका तो मुंह में हाथ डाल के वध किया केशी घाट पे। और ये प्रदर्शन करने के लिए वेद के नाम में मेरे ब्रज के प्रेमी भक्तों को कोई विचलित न कर सके, इसलिए केसी का उद्धार किया। फिर भगवान ने वृषभ के रूप में, एक बैल के रूप में, बड़ा असुर गोपियों के संग भगवान खड़े हैं आया है, उस वृषभासुर को घुमा घुमा के पटका है और मारा है। और फिर भगवान ने राधा कुंड का प्रकट्य किया है, ये धर्म बैल के रूप में आता है। आज भगवान ने कहा धर्म के नाम में कोई मेरे ब्रजवासियों के प्रेम को विचलित न कर सके। और तीसरा वयमासुर का वध किया है, जो ग्वाल बालों को गुफा में बंद कर रहा था, भगवान ने इस ये गुफा में बंद करना योगी है, तो योग के नाम में कोई ब्रजवासियों के प्रेम को विचलित न करे। तो भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको न तो वेद के नाम में विचलित किया जा सकता है, न धर्म के नाम में विचलित किया जा सकता है, न योग के नाम में विचलित किया जा सकता है। इन तीनों से ऊपर है। भगवत गीता में लिखा है जो मेरे प्रेमी भक्त है वो वेद के कर्म कांड के विधि विधानों का अतिक्रमण करके मेरे प्रेम में लग जाते हैं। गोपियां तो धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन, यही तो सर्वधर्मान परित्यज की परिभाषा है। तो इन तीन असुरों का उद्धार करने के बाद नारद जी आए हैं कंस के पास और कहते हैं, कंस वसुदेव के दो पुत्र जो अभी तक आपको नहीं मिले और आपके सारे भेजे हुए असुर कोई वापस नहीं आया, मैं समाचार देता हूं नंद के भवन में कृष्ण और बलराम है ना, ये वसुदेव के पुत्र हैं। कंस ने कहा अच्छा। अक्रूर को कंस ने बुलाया, बोला अक्रूर, अक्रूर यदुवंशी हैं, सारे यदुवंशी कंस के अत्याचार से अन्य स्थानों पे चले गए, दूसरे प्रदेश में चले गए, लेकिन कृष्ण के दर्शन की लालसा से अक्रूर मथुरा में रहा। अक्रूर रोहिणी को मथुरा से गोकुल छोड़ के आया जब वो गर्भवती थी। तो अक्रूर जी ने कहा, अक्रूर को कहता है कंस, आप जाओ कृष्ण बलराम को यहां बुला के लाओ, यहां रंग मंच का और धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, तुम्हें नया रथ देते हैं। अक्रूर कहता है क्रूर कंस के पास कैसे मैं कोमल बच्चों को लेके आऊं, लेकिन मन में भाव आता है कि कृष्ण बलराम के दर्शन का तो सौभाग्य प्राप्त होगा, तो यहां ये नया रथ तैयार हो रहा है, वहां कृष्ण गैया चराने के लिए गए हैं। और नारद ने मिलके कहा, भगवान आपको मेरा नमस्कार है, मैं कंस को समाचार दे के आया हूं, मैं आज के दो दिन के बाद कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, अब बहुत माखन खा लिया, अब मथुरा में वसुदेव और देवकी महाराज उग्रसेन और यदुवंश का भी कल्याण कीजिए, मथुरावासी भी आपके दर्शन के अभिलाषी है। नारद भगवान को ये प्रेरणा दे के चले गए और अक्रूर जी वहां कृष्ण को लेने के लिए निकलते हैं। सुबह निकले हैं लेकिन चिंतन करते हैं, कृष्ण मेरा हाथ पकड़ के कहेगा काका, मेरे को प्रणाम करेगा, बलराम मेरे को प्रणाम करेगा, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखते हैं रथ से उतर के और ब्रज की रज में लौटते हैं। सायंकाल को अक्रूर पहुंचे हैं नंदगांव में, नंद बाबा ने अक्रूर का स्वागत किया है, गाय को लाके दिखाया है। पहले अतिथि आता था तो गाय दिखाई जाती थी, वैसे गाय के पीछे के भाग में लक्ष्मी का निवास होता है, भगवान को भी प्राण प्रतिष्ठा के समय गाय का पिछला भाग दर्शन करा के फिर कन्याओं का दर्शन कराते हैं, फिर ब्राह्मणों का दर्शन करते हैं, और गाय दिखाने से ये होता कि इस गाय का दूध अतिथि आपके लिए हम उपलब्ध करके देंगे, फिर तो थके तो नहीं है, उनके चरण समायन की व्यवस्था की, उनके भोजन की व्यवस्था की और सारी रात कृष्ण के समाचार की बात की। और अक्रूर जी ने कहा मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूँ, कंस ने बुलाया है, बहुत बड़ा यज्ञ है, दोनों बालकों को मेरे रथ में और आप सब अपने चक्रों में चढ़ के आना। रात की तो बात पूरी हुई, गोपियों ने रथ को देखा, अक्रूर को देखा और कृष्ण बलराम। सुबह ने कन्हैया को संकट में डाल दिया तो मैं अपराधी कहलाऊंगा। भगवान ने कहा काका ये जमुना जी में जरा स्नान तो कर लो। अक्रूर स्नान करने गए हैं तो डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि अंदर चतुर्भुज रूप में वसुदेव कृष्ण और अनंत शेष दर्शन होता है। फिर अंदर से बाहर निकल के देखते हैं रथ के अंदर कृष्ण बलराम बैठे हैं वही रूप में। फिर डुबकी लगाते हैं फिर वही देखते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वापस बाहर आया भगवान ने कहा काका कोई आश्चर्य? बोला बेटा आपके दर्शन के बाद अब कोई आश्चर्य नहीं। अक्रूर को यहां भय समाप्त हो गया। और अब वो बात दोबारा याद कीजिए के जो यशोदा ने जिस लाला को जन्म दिया था स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस अक्रूर घाट की सीमा पे रुक गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक चरण भी ब्रज से बाहर मैं नहीं जाता हूं, मैं तो निरंतर ब्रज में ही वास करता हूं, ब्रज से बाहर कभी मैं नहीं जाता हूं। अब यहां आपको एक बात बता के फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान की लीलाएं दो प्रकार की होती है, एक भगवान की अप्रकट नित्य लीला होती है, अप्रकट मतलब जो दिखने में नहीं आती और नित्य का मतलब आज भी चल रही है, और दूसरी भगवान की लीला को कहते हैं प्रकट व्यवहारिक लीला। प्रकट का मतलब देखने में आए, व्यवहारिक का मतलब जो सामने कोई है उससे बात करे, कोई बेटा बने, कोई भाई बने, कोई मित्र बने, ये अवतार काल में लीला होती है। जो भागवत में है ये व्यवहारिक लीला है, शास्त्र पुराण में है ये अवतार काल की लीला है, लेकिन भगवान की अनंत नित्य लीला है। जो जिनका हृदय तपस्या से पवित्र हुआ है, प्रेम से कोमल हो गया है, निर्मल हो गया है, उनके हृदय के अंदर भगवान की नित्य लीला धारावाहिक चलती है। इसलिए बहुत सी ऐसी लीलाओं का अनुभव पवित्र हृदय वाले महात्मा करते हैं जो शास्त्र में नहीं मिलेंगे। तो यहां कृष्ण और बलदेव तो अदृश्य रूप में अप्रकट लीला में ब्रज में रह गए, और यहां से वसुदेव कृष्ण जो धर्म की स्थापना के लिए, असुरों के संहार के लिए आए हैं, वो उस भाव में, दो व्यक्ति दो नहीं है, भाव दो है, भाव राज में दो है। कृष्ण की लीला जो द्वारका में है वो मधुर है, मथुरा में है मधुरतर है, और जो वृंदावन में है मधुरतम है, अति मधुर है। वृंदावन में श्री कृष्ण की ऐश्वर्य की लीला दिखती है, गोवर्धन उठाते हैं, कोई सामान्य बच्चे का काम नहीं है, ये तो भगवता है। रास में एक से अनेक हो जाते हैं, ये भगवता है। इसलिए भगवान शब्द कहा है, व्यास देव ने भगवान शब्द लिखा है कि ये भगवान की लीला है। लेकिन ये ईश्वर, ये ऐश्वर्य भाव माधुर्य से, माधुर्य के नियंत्रण में है। माधुर्य भाव, एक उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी पाद। पहले जमाने में आदमी दान देते थे ना, तो सोना दान देता होता, तो घी देते थे, आधा किलो घी दान देते थे, लेकिन घी के अंदर सोने का सिक्का डाल देते थे, गुप्त दान। तो घर में जाके घी गर्म किया जाता था तो सोना देखता, तो घी की वैल्यू कम हो जाती थी, सोने को खुश हो जाते देख के। तो अगर सोने को देखकर घी की वैल्यू कम हो जाए, ये हुआ ऐश्वर्य, धन देख के घी कम हो गया। ऐसे द्वारका में भगवान द्वारकाधीश है, पिघला हुआ घी पिघल गया तो सोना महत्वपूर्ण दिख रहा है, लेकिन ब्रज के अंदर घी कभी पिघलता ही नहीं है। अंदर भले किलो सोना पड़ा हो, लेकिन गोपियों के हृदय में घनीभूत प्रेम है। ऐश्वर्य में भगवान गोवर्धन उठाए तो भी कहेंगे ये तो लाला हमारा है, हमारी माखन की शक्ति से उठाया, या हमारे डंडू से गोवर्धन उठा, ये कन्हैया भगवान नहीं है। कन्हैया उनको भगवान नहीं लगते, कन्हैया उनको भगवान नहीं लगते। तो माधुर्य के नियंत्रण में ऐश्वर्य है ब्रज में, और द्वारका में ऐश्वर्य के नियंत्रण में माधुर्य। माधुर्य है, वहां रानियां प्रेम करती हैं, सारी भगवान की रानियां प्रेम करती हैं, लेकिन ऐश्वर्य हाथ जोड़ के खड़ी होती हैं, या गोपियां हाथ जोड़ने वाली नहीं है। तो ये बड़ा अद्भुत प्रेम है। तो श्री कृष्ण यहां रुक गए, यहां से आगे नहीं गए, बलराम जी भी यहां आदि रह गए, और अक्रूर आस्ते, अब नंद बाबा पहले पहुंच गए थे, बगीचे में छकड़े खड़े थे। कृष्ण बलराम ने उतर के नंद बाबा के पास रुके, अक्रूर काका ने कहा हमारे घर आइए, मतलब सब यहाँ के कार्य संपन्न करके फिर आएंगे। रात को तो सो गए कृष्ण बलराम अपने दूध पी के गायों का, और सो गए नंद बाबा के शिविर में। सुबह 10-11 बजे छोटे बालक हैं उठे हैं, बोला चलो मथुरा के शहर का निरीक्षण करते हैं, दर्शन करने जाते हैं। देखा ग्वाल बाल हमारे आए हैं, सारे कपड़े तो ग्वाल बालों के, वही थोड़ा गोबर लगा हुआ है, अच्छे कपड़े पहनाने की व्यवस्था करना चाहिए। तो एक धोबी जा रहा था, धोबी को कहे रुक जा ये कपड़े, बोला कंस के कपड़े हैं, बोला हमारे देखो बच्चे साथ आए हैं ग्वाल बालों को धोना, हम नगर का भ्रमण करेंगे अच्छे कपड़े पहनेंगे। तो उसने कहा तुम कंस के कपड़े, राजा के कपड़े आपको कैसे दे सकता हूं। भगवान ने ग्वालों की ओर देखा, उल्टा हाथ ऐसे उसके गर्दन को मारा, धोबी का गर्दन दूर जाके गिरा, और सबको कहा उठाओ कपड़े। अब तो आतंक ऐसा मथुरा में फैल गया, धोबी तो सारे गांव छोड़ के, मथुरा नगर छोड़ के चले गए, इतना भयभीत सब हो गए। बोला ये धोबी कौन था, बोला ये वो धोबी था जिसने सीता के ऊपर आरोप लगाया था कि पराये घर में क्यों रही है। राम ने कहा मैं तो मर्यादा में उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, अब इस अवतार में तो इसका राम नाम सत हो गया। अब कपड़े तो सारे तैयार हो गए, लेकिन कपड़े कंस के बड़े हैं, ग्वाल बाल छोटे हैं, एक दर्जी को कहा कि जरा इनको इनकी नाप के बना के दे दो। दर्जी ने बाकी सबको कहा बच्चों की नाप, और स्वयं कृष्ण को देखता है आंखों से आंसू बह रहे हैं और सुंदर कपड़े सजा रहा है। पूछा इतना जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? बोला मैं वो दर्जी हूं जिसने राम के राज तिलक की पोशाक को तैयार किया था, लेकिन वो पोशाक रह गई, राम जी वनवास चले गए, तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज तो मुझे जी भर के आपके शरीर को देखकर इस पोशाक को बनाने का सौभाग्य दे। अब पोशाक तैयार हो गई तो सीधे चले गए सुधामा माली के घर में। सुधामा माली ने स्वागत किया, आसन के ऊपर बिठाया, जितनी मालाएं बनी थी आज सब ग्वाल बालों के गले में डाली, कृष्ण के गले में सुंदर वैजंती माला की तरह पांच पांच पुष्पों की मालाएं, पांच भक्तों के भावों के रस को भर के डाला। भगवान ने कहा तुम्हारे घर में लक्ष्मी अखुट रहेगी, नित्य रहेगी। अब तो सारे माली पूरे मथुरा के कृष्ण के पक्ष में हो गए। अब एक तरफ तो ये कृष्ण के पक्ष में हो गए, धोबी भाग के गए, आतंक हो गया। अब कहा कपड़े भी अच्छे हो गए, माला हो गई, लेकिन थोड़ा चंदन तो लगना चाहिए। देखा कुब्जा टेढ़ी जा रही है, हे सुंदरी, वो तो बड़ी खुश हो गई कि लोग तो यहां मुझे बंदरी कहते हैं, मैं टेढ़ी हूं, ये मुझे सुंदरी कौन कह रहा है? और सुंदरी कहा क्या है, अंगराग है, भोजराज को घोड़ा अच्छा लगता है, कंस को लगाती हूं। बोला हमको लगा देंगी? अरे आप जैसा सुंदर लगाने को मिले तो मेरा सौभाग्य है। प्रेम से कृष्ण को लगाया, बलराम को लगाया, गोपू को चंदन लगाया। भगवान ने कहा इसको तो तत्काल फल देना चाहिए। भगवान ने एक पांव उसके पांव के ऊपर रखा, एक पांव से चुटिया को पकड़ा, एक हाथ से दूसरे हाथ दे मारा कुबड़ के ऊपर, मुका एकदम सीधी सुंदरी हो गई। अब तो सारे मथुरा में कहा कि सब ब्यूटी पार्लर बंद करा दो, ये तो हाथ से सुंदर बना देता है, कुबड़ी सुंदरी हो गई। सारी स्त्रियां कृष्ण के पक्ष में हो गई। अब तो ऐसा हो गया कि वो दो घंटे में सारे मथुरा का वातावरण बदल गया, और सायंकाल होने लगी तो कृष्ण उस रंग मंच में गया जहां धनुष रखा हुआ था, और वहां खड़े थे जो उनके संतरी, अंदर सीधे धनुष के पास गए, बोला नहीं जाओ, कल यज्ञ में रखेंगे। बोला आज ही हम इसका काम पूरा करते हैं। धनुष को उठाया, दो टुकड़े करके फेंक दिया, और जो खड़े थे सब कंस के सैनिकों को मार के दिया, और दोनों भाई रात को जाके दूध पी के सो गए। कंस को यह समाचार मिला, दूसरे दिन रंग मंच के अंदर ऊपर मंच पे कंस बैठा है अपने मंत्रियों के संग में, और चाणो और मुष्टिक शल तोशल बड़े बड़े कुश्ती करने वाले पहलवान है, और आगे दरवाजे के ऊपर कबलिया पीड़ हाथी के ऊपर। महावत को कहा कृष्ण बलराम को इस हाथी के पांव के नीचे दबा देना, अंदर आने मत देना। अब सारा मंच सजा हुआ है, ऊपर नंद बाबा आदि ग्वाल बाल बैठे हैं, मथुरावासी बैठे हैं, और कृष्ण बलराम जैसे गेट के ऊपर आते हैं, कोलिया पीड़ हाथी खड़ा है, अंदर नहीं जा सकते हो। बोला मामा ने निमंत्रण दे के बुलाया, देखो ये निमंत्रण पत्र है, अक्रूर जी हमारे लिए नया रथ लाए थे। बोला अंदर नहीं जा सकते हो, ये हाथी नहीं हटेगा। कृष्ण का बलराम जी ये हाथी नहीं हटेगा, तो पूंछ से छेके हाथी को पीछे खींचा और सूंड से लेके नीचे पटका, हाथी के दोनों दांत निकाले, महावत को मारा, हाथी को मारा, एक लोहे से लहू से सना हुआ दांत कृष्ण के कांधे पे और एक बलराम के कांधे पे दोनों प्रवेश किया। कंस कहता है ये सामने कौन आ रहा है, ये इनके कंधे के ऊपर क्या है, ये कृष्ण बलराम है, ये कोलिया पीड़ के हाथी के दोनों हाथ दांत टूट गए, कोलिया पीड़ मर गया। अरे मरने जैसा हाथी नहीं था, भयभीत होके गए, जल्दी करो चारों मुष्टिक। आप चारों मुष्टिक आगे कहते हे कृष्ण बलराम हमारे साथ कुश्ती करो। कृष्ण बलराम कहते हम कोमल 11 वर्ष के बालक है, तुम कितने बड़े पहलवान हो, तुम्हारे साथ कुश्ती? बोलते तो मैं जानता हूं कहां गया अघासुर, कहां गया बकासुर, कहां गई पुत्रा, कहां गया तृणावर्त, ये सब वापस एक भी नहीं आया है। कहते हम बच्चे हैं, ऊपर लोग कहते हैं ये अन्याय है, देखो कितने कोमल बच्चे हैं और कितने भारी भरकम ये पहलवान है, इनके साथ कैसे करेंगे ये? लेकिन कन्हैया के ग्वाल बाल कहते अरे अभी हमारा कन्हैया इनको पटक के मार देगा। अब इस बीच में चारों को कृष्ण ने हाथ मिलाया और मुष्टिक के साथ बलराम जी, अरे इनका भी सौभाग्य देखो कि भगवान गले लगा रहे हैं, भाई कुश्ती करेंगे तो गला गले से लगेगा कि नहीं, उनको आलिंगन मिल गया। इतने कितने बड़े नसुरों का सौभाग्य है कि जिसको गोपियां आलिंगन करने के लिए लालायत होती हैं, वो कृष्ण का आलिंगन करना इनको प्राप्त हुआ। थोड़ी देर के बाद कृष्ण ने चारों को नीचे पटका और बलराम ने मुष्टिक को पटका, और खल तोशल आया, बलराम इनको आप देखो, मामा मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। कृष्ण कूद के सीधा मंच के ऊपर गए और एकदम कंस उठ के खड़ा हुआ, बोला अच्छा किया भगवान के आने के ऊपर खड़ा हुआ, कम से कम एक तो उसको सौभाग्य प्राप्त हो गया, भगवान के आने के ऊपर खड़ा हो गया। और तलवार निकाली, कृष्ण ने झटका दिया, तलवार गिरी, बाप मामा का बाल पकड़े और ऐसे मंच से नीचे गिराया, और जैसे नीचे गिराए कृष्ण छाती के ऊपर बैठे हैं और कंस का तो हार्ट फेल हो गया। अब मुक्का ही नहीं मारा है, हाथ ऐसे किया है कंस, कुछ नहीं किया कृष्ण ने, छाती के ऊपर भगवान बैठे हैं, चरण भगवान के उनकी छाती के ऊपर है और कंस के प्राण निकल गए और कंस का वध हुआ। अब कंस के कुछ भाई और आए, बलराम जी ने सबको मार दिया। अब तो सीधे जाके उग्रसेन को जेल से आजाद किया, जिसको कंस ने जेल में बंद किया था अपने पिता को, और उसके बाद अपने माता पिता के पास वसुदेव और देवकी के पास गए। वसुदेव और देवकी ने तो सूत की गिरा से दूध पिला के विदा किया था, आज 11 साल के बाद उनको उनका चतुर्भुज रूप याद आया, हाथ जोड़े, भगवान ने कहा कि इनके हृदय में अभी ऐश्वर्य का मेरा भाव है, इनके हृदय में वात्सल्य भाव का संचार करना चाहिए। भगवान ने कहा वो पुत्र भी कैसा जो माता पिता के संकट में सेवा में काम ना आए, हम 11 वर्ष तक आपकी सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हमको क्षमा करना। इतना सुनते ही देवकी के स्तन में दूध उतर आया, वसुदेव ने सर सूंघ लिया, दोनों बेटों को गोद में बिठाया है, आंसुओं से और दूध से अभिषेक हो गया है। और इसके बाद यदुवंशी जो अन्य प्रांतों में गए थे वो सब वापस काले, जिनके बाल सफेद हो गए थे कृष्ण और बलराम को देख के बाल भी काले हो गए। वैसे भी कहते हैं कि राजा रानी के बाल काले हैं और कृष्ण के बाल थोड़े पीले रंग के हैं, बोले ऐसे क्यों, बोले जो कृष्ण का ध्यान करता है उसके बाल अपने आप काले हो जाते हैं, तो कृष्ण का बाल ध्यान किया करो, बाल कभी सफेद होंगे ही नहीं, काले होते रहेंगे। लिखा है ऐसे, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है यदुवंशी जो भयभीत होके चले गए थे, बूढ़े हो गए थे, वो वापस जवान हो गए, वापस मथुरा में आ गए, उग्रसेन मथुरा का राजा बना। तब वसुदेव कहता है मेरा बेटा 11 साल हो गया, अभी तक स्कूल नहीं गया, पाठशाला नहीं गया, कुछ तो विद्या प्राप्त करनी चाहिए। सांदीपनि मुनि जो बनारस से आया था वो उज्जैन में रहता था, उनके पास 64 दिन के लिए दोनों भाई गए हैं, सब विद्याओं में प्रांगत हुए हैं, और गुरु दक्षिणा में गुरु माता कहती है हमारा पुत्र, हम गए थे समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में और वहां बच्चा डूब गया था, हमको हमारा बच्चा ला के दीजिए, आप जैसा योग्य शिष्य हो तो वो यही दक्षिणा उत्तम है। कृष्ण बलराम ने समुद्र के अंदर जाके एक शंख के अंदर राक्षस था उसका वध किया, उस वहां से भगवान को 5 जन्य शंख मिला। फिर भगवान संयमपुरी जो यमराज की है वहां गए, अपने गुरु के बालक को वापस लाए और सांदीपनि मुनि को गुरु दक्षिणा में उनके मृतक पुत्र को यमलोक से वापस लाए। यमराज ने कहा अपने कर्मों से आया है, भगवान ने कहा हमारे दर्शन के बाद किसी का कर्म नहीं रह जाता है। सांदीपनि मुनि ने दोनों हाथों से अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया, मेरी शिक्षा सदा आपके साथ रहे और जब तक सूर्य चांद रहे आपका गुण इस दुनिया के अंदर महिमा सदा गाई जाएगी। अब श्री कृष्ण बलराम वापस आए हैं, तब वो कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति जरासंध की बेटियां चली गई अपने पिता के पास, विधवाओं को देखकर 23 अक्षुणी सेना लेकर जरासंध आक्रमण करने के लिए। अब यहां एक बात और बीच में कर ले, वो पहुंचे जरासंध, उससे पहले कंस के वध के दूसरे दिन कृष्ण बलराम नंद बाबा के बगीचे में जहाँ बगियां खड़ी थी वहां चले गए, बैलगाड़ियां, कहा पिताजी नंद बाबा अब आप ब्रज में लौट जाओ। अरे लाला आप साथ चलो ना, अब यहां मथुरा के वासियों का थोड़ा हित करना है, हमको यहां रहना पड़ेगा। नंद बाबा के तो पांव के नीचे से धरती निकल गई, मूर्छित होते हुए बचे। और फिर कृष्ण ने कहा पिताजी अब जब याद करेंगे मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन अब क्योंकि कंस के सुसर आक्रमण करेगा मथुरा में, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ब्रज में कोई उत्पाद हो और वहां हमारे पास व्यवस्था भी लड़ने की नहीं है, इसलिए अब आप वापस जाइए। और जैसे नंद बाबा नंद गांव पहुंचे हैं, यशोदा बाहर खड़ी है, कहीं कन्हैया नहीं आया, बलराम को नहीं लाए। और यशोदा ने कहा, महर फिर तुम जीवित कैसे वापस आए? नंद बाबा कहता है, पिता तो एक ही हुआ है, दशरथ जो पुत्र के नहीं मिलने के ऊपर राम जी के प्राण निकल गए। हम तो कन्हैया के बगैर यहां आए, क्योंकि कन्हैया ने कहा कि मैं वापस लौट के आऊंगा, प्राण तो मेरे निकल गए होते यशोदा, और मैं मर गया होता तो तू नहीं रहती, तू नहीं रहता तो ब्रजवासी नहीं रहता, और कन्हैया ने कहा है कि मैं लौट के आऊंगा, और वो लौट के आता और हमको नहीं देखता, उसको कितना दुख होता। इसलिए हम रोज उनकी जुदाई में मरेंगे और फिर भी सांस लेते रहेंगे, क्योंकि उसने कहा है आएगा, और जब वो आएगा और हम नहीं होएंगे तब उसको बहुत बड़ी पीड़ा होगी। तो भगवान के सुख के लिए हम हर दुख को सहने को तैयार हैं। ये ब्रजवासियों का अद्भुत प्रेम है। और जरासंध की सेना 23 अक्षौणी आई है, कृष्ण बलराम यदुवंशियों की सेना के साथ सारी सेना का संहार किया है। बलराम जी ने हल से गर्दन पकड़ा है जरासंध का और मूसल किया है। कृष्ण कहता है, मेरे ससुर का मामा है अपने का बेटा, भैया अपने ससुर के मामा को मत मारो। आंख मारी, बोला ऐसे क्यों, मामा को मार दिया, मामे के ससुर को नहीं मारो? बोला हम कहां बदमाशों को ढूंढने के जाएंगे, अपने आप ये लेके आता रहेगा, हम बैठे घर बैठे मारते रहेंगे। और 17 बार जरासंध 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके लाया और 17 बार सबका विनाश किया और एक जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को कहा, तुम यज्ञ करो, पूजा करो, इस बार हमारी विजय होनी चाहिए, और आगे आगे हमारे सफलता के लिए और विजय के लिए मंत्र पढ़ते हुए चलो। और दूसरे तरफ काल यवन, जो गर्ग आचार्य के एक बेटे को के ऊपर कोई हंसा था, उसने जाके यवन से एक पुत्र उत्पन्न किया था, जिसने बड़ी तपस्या की थी और आशीर्वाद लिया था कि एक दिन यदुवंशी मुझे देख के भाग जाएंगे। और काल यवन एक तरफ बहुत भयानक सेना लेके आया। श्री कृष्ण ने कहा, अब इस वक्त मथुरा के हमारे सारे बंधु बांधव संकट में है, एक तरफ से काल यवन और दूसरे तरफ से जरासंध आ रहा है, अब इनको सुरक्षित स्थान में पहले पहुंचाते हैं। विश्वकर्मा को बुलाकर समुद्र के बीच में द्वारका नगरी का निर्माण किया। भगवान ने सब यदुवंशियों को द्वारका भेज दिया। और फिर कृष्ण और बलराम को कहा कि आप सुरक्षा के लिए यहां दुर्ग में रहिए, फिर मथुरा में रहिए। और अकेला कृष्ण घूमते हुए बाहर आया। काल यवन ने देखा कृष्ण को, बोला ये तो कुछ भी हाथ में नहीं है, ऐसे आया है, और उसकी तोड़ दौड़ा और कहा, आगे कृष्ण दौड़ा, पीछे काल यवन दौड़ा, बोला अभी पहुंच जाऊंगा, पहुंच नहीं पाया और यहीं आपके धौलपुर तक आया और अंदर मुचकुंड सोया हुआ था एक गुफा में। अरे माता जी इसको रख के जाओ, कथा में व्यवधान हो रहा, रखो इसको, जहां रखना है वहां रखो। अरे कृष्ण ये पूजा नहीं है, ये मेरी कथा बीच में रुक जाती है। अरे कृष्ण हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा,
हरे हरे,
हरे हरे,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
राम राम,
राम राम,
हरे हरे,
हरे।
सो भगवान ने अपना पीतांबर ओत्री मुचकुंड के ऊपर डाल दिया और भगवान अंदर चले गए। काल यवन आया हांफता हांफता और देखा इस मुचकुंड के ऊपर पीले कपड़े को, बोला यहां सो गया, आके लात मारी और जैसे मुचकुंड ने आंखें खोली प्राण निकल गए, आंख से देखा और काल यवन भस्म हो गया। भगवान ने कहा ये मेरे मारने के योग्य नहीं था और मुचकुंड को ये वरदान था कि जो मेरी नींद खराब करेगा। देवताओं ने वरदान दिया था, देवताओं के युद्ध में सहायता की थी, देवताओं ने कहा जाके आराम करो, जो आपकी नींद खराब करके उठाएगा आपकी नजर पड़ते ही भस्म हो जाएगा। यहां काल यवन का भगवान ने विनाश किया, वापस जाके सारी सेना का धन लूट लिया और कृष्ण बलराम सारे धन के साथ गाड़ियां भर रहे थे, तब तक जरासंध की सेना आके मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। और आगे ब्राह्मण गाते हुए आ रहे हैं, गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय गोविंदाय। भगवान ने कहा इस बार अगर जरासंध को हराया तो फिर ब्राह्मणों को मार देगा और मैं तो गौ ब्राह्मण के हित के लिए अवतार लिया है, इसलिए बलराम चलो भाग के निकलते हैं। जरासंध के आगे से कृष्ण और बलराम भागे, भगवान का नाम रणछोड़ हो गया और रणछोड़ के नाम से भी उनकी पूजा हो रही है। और जब वो भागते हुए जा रहे हैं, जरासंध पीछे भागा है, जरासंध पीछे भागा है और बोला ये काल यमन का पाप का धन अच्छा हुआ हमारे हाथ नहीं आया, ये जरासंध के पास जाएगा तो उसका विनाश करेगा, सब धन छोड़ के भागे हैं। और जिसको अब जूनागढ़ में पर्वत कहते हैं, जूनागढ़ में जो पर्वत है उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए, परसरो पर्वत के ऊपर। अब जरासंध ने देखा कि ऊपर चले गए, चारों ओर से आग लगाई के मर के भस्म हो जाएंगे, और कृष्ण बलराम वहां से कूद के द्वारका पहुंच गए। लेकिन यहाँ एक कथा और बता दें, द्वारका जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में तीन काम अपने भक्तों को दिए हुए वचन को और भक्तों के सहायता के कार्य को किया। तीन तो पक्का है लेकिन चार, पहले तो अक्रूर काका को कहा था आपके घर आएंगे आज, अब बलराम जी के साथ और उद्धव के साथ अक्रूर काका के घर गए हैं। अक्रूर ने बड़ा आदर दिया है, सम्मान किया है, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है काका अक्रूर एक काम करो, आप हस्तिनापुर चले जाओ, हमारी बुआ वहां कुंती अपने पांच बच्चों के साथ रह रही है, पांडवों का और कुंती का समाचार ले आके मेरे को दे दो। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को वचन दिया था कि मैं आपके पास आऊंगा, उद्धव के साथ कुब्जा के पास चले गए, और ये सिर्फ इसलिए गए कि जब मैं कुब्जा को वचन दिया था उसका वचन पूरा किया तो गोपियां आपको वचन दिया है, निश्चित रूप से मैं आप के पास भी वापस आऊंगा। गोपियों के प्रेम की पुष्टि करने के लिए कुब्जा के पास कृष्ण अकेले नहीं गए हैं, उद्धव के साथ गए हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव का हाथ पकड़ के जमुना के किनारे कहा कि अब यहां से बहुत दूर द्वारका चले जाएंगे, हमारे पड़ोस में रहने वाले ये प्रेमी हमारे ब्रजवासी, इनको वियोग होगा, आप ऐसे करो मेरा संदेश ले जाओ। नंद बाबा और यशोदा को ये तो प्रेम से संदेश देना, लेकिन गोपियों का मन मेरे पास है, वो तुम्हारे संदेश को समझ नहीं पाएंगी, इसलिए मेरी चिट्ठी ले जाके उसको पढ़ के सुनाना। अब भगवान का उद्देश्य तो एक संदेश का था और एक अपने प्रेमी परम भागवत भक्त उद्धव को जो बृहस्पति का शिष्य था उसको प्रेम का पाठ पढ़ाना था। गोपियां प्रेम की कक्षा की प्रोफेसर हैं गोपियां, उनके पास उद्धव को भेजना था। अब उद्धव रथ में, कृष्ण ने अपने कपड़े दिए, उद्धव देखने में कृष्ण जैसा ही लगता है, कृष्ण के भाई का बेटा भी है और यदुवंशियों में परवर है, मंत्री है, कृष्ण प्रेष्ठ है, कृष्ण का प्रिय है, बड़ा बुद्धिमान बृहस्पति का शिष्य है। भगवान श्री कृष्ण के ही उतरे हुए वस्त्र पहनता है, 5 वर्ष का था तब से कृष्ण के कपड़े ही पहनता था, कृष्ण की गुड़िया से खेलता था, कृष्ण का परम भागवत है। रथ में चढ़ के ब्रज में जैसे आया है, पूछ रहा है, सब कहीं देखा है तो हर जगह सब सुंदर सुंदर सब चीजें दिख रही हैं। पूछा किसी से, नंद भवन कहाँ है, तो उन्होंने कहा एक तो हमारे पास समय नहीं है और दूसरा हमारे पास साहस भी नहीं है वहां तक जाने का, ये जो पानी का परनाला आ रहा है ना इसके सहारे सहारे चले जाओ आप नंद भवन पहुंच जाओगे। बोला क्यों, वहां कोई झरना है? बोला झरना नहीं है, नंद और यशोदा के आंखों से आंसू से ये झरना बह रहा है और यहां से जमुना तक जा रहा है, और उस झरने के सहारे उद्धव नंद भवन में पहुंचता है। नंद बाबा उद्धव का बड़ा स्वागत करते हैं, सारी रात कृष्ण का समाचार पूछते हैं, यशोदा तो केवल देख रही है, आंखों से आंसू बह रही है। नंद बाबा कहते हैं हम तो फिर भी पुरुष हैं, कुछ समय बाहर चले जाते हैं, चौपाल में बैठ लेते हैं, लेकिन ये रोज सुबह उठ के आरती की थाली बनाती है कि अभी कन्हैया गैया चराने जाएगा, और सब ग्वालों को गैया चराने जाते हुए देखती है तब फिर मूर्छित होकर गिर पड़ती है, और फिर अचानक कन्हैया कन्हैया करती है, फिर समझती है इसकी गोद में कन्हैया आ गया, और शाम को फिर आरती लेके खड़ी होती है, गोधूली को देखती है, प्रतीक्षा करती है कि कन्हैया आता होगा, लेकिन गैया जाती है, सब ग्वाल जाते हैं, कन्हैया नहीं आती है, तो कन्हैया करके पछाड़ के गिर जाती है, मैं बैठ के इसको संभालता हूँ। सारी रात 4 बजे उद्धव नहाने के लिए जमुना गया है, गोपियों को देखा सब घर में दही का मंथन हो रहा है, गाय का दोहन हो रहा है, आरतियां हो रही है, सब ब्रजवासी इस आशा में सारे कार्य कर रहे थे, सज धज के रह रहे थे। कन्हैया ने कहा कि हम आएंगे और आ गया और हमको कहीं दुखी देखा तो कन्हैया को बड़ा दुख होगा, हृदय में तो पीड़ा होती है। अब गोपियों ने देखा कि रथ में कहीं कन्हैया तो नहीं आया है, और उद्धव को देखा कन्हैया जैसे कपड़े हैं लेकिन उनका तो प्रेम कन्हैया से है। उद्धव को घेर लिया गोपियों ने, और जहां उद्धव गोपियों के बीच में संवाद हुआ है वो तो उद्धव ने चिट्ठी कृष्ण की पढ़ के पन सुनाई है। तब एक भंवरा उड़ता हुआ आया है और राधा रानी उस वक्त प्रेम का पागलपन, इसको कहते हैं प्रेम का पागलपन, उन्मद। उसमें जो श्लोक 9 श्लोक है या कितने हैं, उनमें जितने भी चित्र विचित्र भाव हैं उन उसको भ्रमर गीत कहते हैं। उस गीत में उस भंवरे को कृष्ण समझ के और उससे बात करती है, और फिर उद्धव को देखा है तब उस भाव से बाहर निकल के उद्धव 4 महीने से अधिक ब्रज में रहा। कभी देखता है तो गोपी एक पानी भरने जा रही है, बच्चा एक गोद में है, मटका सर के ऊपर है, कुएं के ऊपर जब पहुंचती है तो मटके में रस्सा बांधने के बजाय बच्चे के गले में रस्सा बांध के चूल्हे में जो कुएं में डाल रही है। उद्धव ने हाथ पकड़ा, ये बावरी गोपी क्या कर रही है, मटका है बच्चा है। बोला देखो कदम के ऊपर कन्हैया बांसुरी बजा रहा है। अरे कन्हैया बांसुरी बजा रहा है तेरा बच्चा? अच्छा बच्चा है, हमको तो कन्हैया दिखता है। जिसको अपने बच्चे की सुध नहीं है उनको तो जहां देखें वहां कन्हैया दिखता है। तो ये उद्धव वहां से जब आया तो सबने उपहार दिए। गोपियों को उद्धव ने उपदेश देने का प्रयास किया लेकिन गोपियों के ने कहा कि तुम कहते हो मन लगाओ, मन तो हमारे पास एक ही था उद्धव, वो तो कन्हैया के साथ चला गया। अब हमारा कन्हैया के पास ही मन चला गया, उसको जितना जल्दी ला सको उतना लाना, बाकी और सबका जाके भगवान को समाचार दिया है। अक्रूर जब गया था तो कुंती ने कहा कि मैं जैसे कोई हिरणी बाघों के बीच में घिर जाती है ऐसे मेरे 5 बच्चों के साथ मैं कौरवों के षड्यंत्र में गिरी हूं। और फिर अचानक ऐसे लगा कि कुंती ने के सामने कृष्ण सामने खड़ा हो, कहा हे कृष्ण अब मैं आपके शरण, मेरे बच्चों की रक्षा आपके हाथ में, आप ही अब हमारी रक्षा कीजिए, ऐसे कुंती का संदेश। और फिर अक्रूर चला गया, भीष्म देव को समाचार दिया, और फिर धृतराष्ट्र के पास गया, बोला आप बड़े हो कौरव कुल के, आपको पांडु के पुत्रों के साथ भी सम व्यवहार करना चाहिए। धृतराष्ट्र कहता है आपकी बातें बहुत सच्ची हैं और अच्छी हैं लेकिन मेरे हृदय में टिकती नहीं है। मैं जानता हूं कृष्ण ने अवतार लिया है पांडवों की रक्षा के लिए, अब जो उनकी इच्छा होगी वो होगा। ये समाचार भी अक्रूर ने आके कृष्ण को दिया है। अब कृष्ण द्वारका में जब पहुंचे हैं, द्वारका नगरी का तो पहले ही बहुत बड़ी विशाल नगरी बनी है समुद्र के बीच में सुरक्षा। अब बलराम जी के विवाह का प्रसंग आता है। पुराना प्राचीन नाम द्वारका जो है, द्वारका का प्राचीन नाम है, एक तो है कुश स्थली और दूसरा है अनर्त देश। और रेवती का पिता रेवत महाराज, रेवती का दादा रेवत, उसका बेटा ब्रह्मा से पूछने गया कि हमारी पुत्री का विवाह किससे करें। ब्रह्मा जी किसी गंधर्वों के गान में बैठे थे और जब पूछा तो बोला जिन राजाओं के नाम ले रहे उनका वंश भी समाप्त हो गया, समय धरती के ऊपर बहुत बीत गया है, आपकी पुत्री के लिए अब इस वक्त यदुवंश में बलराम जी इनका नित्य जो है पति है, आप ले आइए। अब बलराम जी के साथ रेवती का विवाह होता है। अब कृष्ण के विवाह का प्रसंग आता है तो उस विवाह के लिए रुक्मणी विवाह का प्रसंग यहाँ आता है। इस विवाह का विस्तार न करके हम सिद्धांत बताते हैं। रुक्मणी ने कृष्ण को देखा नहीं था, नारद आदि ऋषियों से कृष्ण की महिमा सुनी थी, उनके गुण सुनी थी, उनकी सुंदरता सुनी थी, उनकी वीरता सुनी थी, उसकी मर्यादाओं का जो प्रवचन सुने थे उनसे उन्होंने कृष्ण को वरण कर लिया था, और फिर एक ब्राह्मण के साथ चिट्ठी लिख के कृष्ण के पास भेजा था, और उस ब्राह्मण को कृष्ण ने बड़े सम्मान के साथ अपनी सुधर्मा सभा से अपने घर ले गए। जैसे ब्राह्मण को आसन के बिठा के चरण धो के कुशल मंगल पूछा तब ब्राह्मण ने कहा ये चिट्ठी हमारी विदर्भ देश की कुमारी ने दी है, भीष्मक भीष्मक क्षीर सागर है, और उसकी पुत्री ये रुक्मणी लक्ष्मी है। लेकिन जैसे खीर सागर से पहले विष निकला था, ऐसे उसका बड़ा भाई रुक्मी विष है, जो रुक्मणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से कराना चाहता है। लेकिन रुक्मणी ने आपको ये प्रेम का पत्र लिखा है। भगवान ने ब्राह्मण को विश्वास पात्र बनाने के लिए कहा, आप ही पत्र को पढ़ लीजिए। पत्र में जो लिखा था रुक्मणी का, वो तो आप पढ़ लीजिए, और कन्या कोई पढ़ेगी तो उसका भी बड़ा अच्छा सुंदर विवाह भगवान कर देंगे। पत्र में बहुत सुंदर जो लिखा है आप पढ़ लीजिएगा। मूल में कृष्ण ने कहा कि मैं भी बहुत प्रेम करता हूं, चलो अभी चलते हैं। और उसी वक्त रात को ही कृष्ण उस पंडित जी को अपने रथ में चढ़ाया और सुबह सवेले जाके कौंडनीपुर पहुंचे हैं विदर्भ देश में। और सुबह उठा है बलराम जी तो कृष्ण के शंख की ध्वनि सुनाई नहीं दी। अरे कृष्ण कहां गया? ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो आया था अवंतिका नगरी से, ना अवंतिका नहीं, अवंतिका तो उज्जैन को बोलते हैं, विदर्भ देश से। कृष्ण उधर तो नहीं चले गए कहीं, ऐसे आया तो? अरे उधर तो जरासंध होगा, उधर तो हमारे बड़े शत्रु शिशुपाल है और उनके दंडवकर है, वैदुरथ है। नहीं नहीं नहीं, एक अक्षौणी सेना यदुवंशियों की ली, ऐसे प्रेम तो इतना है बलराम जी का कृष्ण के संरक्षण के लिए। भागता हुआ पहुंचा आके वहां। अब यहां जरासंध कहता है, इनको किसने बुलाया, ये यदुवंशी कैसे आ गए? किसने कहा? अरे भाई शिशुपाल की मासी के लड़के हैं। बोला हमने तो नहीं बुलाया था। तो क्या महाराज भीष्मक ने बुलाया था? महाराज भीष्मक ने तो चिट्ठी लिखी थी, वो जो उनका बड़ा बेटा था रुक्मी, उसने उसको फाड़ के फेंक दिया था। लेकिन उसको तो पता, शायद चिट्ठी पहुंची होगी। तो आजकल ऐसा होता है विवाह में, घराती कौन है बाराती कौन है पता नहीं लगता है। वो पंडाल के अंदर कोई भी कोट पहन के आता है और खड़ा होकर खा के चला जाता है। हाँ, और सबसे आजकल के विवाह में सबसे ज्यादा अन्याचार और अत्याचार किसके ऊपर होता है? एक दूल्हा के ऊपर, एक दूल्हा के बाप के ऊपर। सब खा जाते हैं, वो बचा हुआ गर्म करके आखिर में उनको खिलाते हैं। ये बड़ा अन्याय होता है। ये जो खड़े खड़े खाने वाला जो स्वभाव आया है ना, ये तो भैंस वाला, इसको बफेलो कहते हैं, क्या कहते हैं, ये भैंस ऊंट की तरह खाते और जूठे हाथ से चम्मच से उठाते, तो कोई साधु संत तो जाता नहीं है। इसलिए ये विवाह चलते भी बहुत ज्यादा नहीं है, परेशानी का काम हो गया। तो बहुत बड़ी दुख की बात है, असल में ये सच्ची बात नहीं है। पहले घराती बाराती का, एक बार कहीं जैसे भोजन भंडारा ऐसे किसी ने प्रसाद का व्यवस्था किया, तो सबको मालूम है कि कोई भी कहीं से, आजकल शादी में एक जोड़ा रखा हो अच्छा खासा कपड़े पहनने वाले पैंट वेंट, तो घुस के अंदर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी एक उसने व्यवस्था मानो कि 100 आदमी की थी, आदमी 150 हो गए, उखड़ा हो गया। बोला जो जो दूल्हे के तरफ है वो सीधे हाथ आ जाएं, तो 50 उधर चले गए, 60। बोले लड़की के तरफ है इस तरफ आ जाएं, तो बाकी 70-80 उस तरफ चले गए। बाकी बचे कितने? 25-40 एक बचे। तब उसने कहा देखो ये मेरी रिटायरमेंट की पार्टी है, दूल्हे की दुल्हन की नहीं है, जो दूल्हे दुल्हन वाले निकलो यहां से। मैं तो 50 इन्हीं को बुलाया था। तो ये बहुत बड़ी समस्या, बहुत समस्या है आजकल। कौन किसके तरफ से आया है कोई नहीं पहचानता है, कौन खा जाता है मालूम नहीं। लेकिन जो घर वाले और उसके ऊपर खर्चा इतना करते हैं, वो सब पानी में जाता है। और जो खाते खाते क्या कहते हैं, उसकी दावत इससे अच्छी थी, हाँ वो अच्छी थी। तो ये खर्चा बेकार का करने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर में विवाह करके अपनी लड़की को दे दो, सोना दे दो, घर दे दो, जिसके काम आए। दक्षिण भारत में आज भी विवाह करते हैं तो 1 किलो सोना बच्ची को देते हैं और 11 से 12 बजे तक डोसा है और इडली खाओ और जाओ। वो 11 से 12 तक खिला के जितना खाना है, वो खाना भी सिंपल होता है, खाओ और जाओ। और जो देना है बच्ची को तो किसी काम तो आए उसके, जिसको देना चाहिए उसको देते नहीं है। और पब्लिक वाले बाहर तो फिर जाके थोड़ी देर कहेंगे अच्छा था, फिर इससे उसका अच्छा था, नहीं तो अगली बार वाला अच्छा होगा ही होगा। इसलिए कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये बेकार का। और खड़े खड़े खिलाओ मत। पहले तो कम से कम हाथ से खिलाया जाता था अपने संबंधी को, तो एक दूसरे के मुंह में ग्रास देते थे तो एक के मुंह का लिहाज करते थे, तो जरा व्यवहार अच्छा हुआ करता था। आजकल दुकानदारी हो गई है, धंधा है भाई, पैसा आएगा इसलिए पार्टी करनी है, वो करनी है तो करो, लेकिन अपने संबंधियों को तो प्रेम से घर में खिलाया करो। और हमारे जमाने में शादी हुआ करती थी तो पहले भोजन जो दूल्हा राजा होता था उसके आगे परोसा जाता था, और वो जिसका जिसका अपने पूर्वजों का, पुरोहितों का, देवों का सब निकाल के पहले वो खाता था, तब बाराती खाते थे। अब सब वो बाराती खा जाते हैं, तब आखिर में दूल्हा को बचा हुआ पता नहीं झूठा है कि सीधा है मालूम नहीं है हमको, वो तो कैटरिंग वाले जाने, और कैटरिंग वाले कौन होते हैं ये भी पता नहीं, सिर्फ ड्रेस ऊपर के दिखती है, बाकी अंदर का उनका भगवान जाने क्या इस देश को हो गया है पता नहीं। रात हम जा रहे थे शराब के दुकान पे, लोग लाइन में खड़े होते हैं, और दूध वाला गली गली में जाके कहता है भैया दूध ले लो भैया दूध, और दूध लेने के बाद बोले इसमें पानी तो नहीं मिलाया, नहीं नहीं पानी नहीं, और शराब जाके खुद लाइन में लेके और उसके अंदर पानी डाल के पीते, क्या इनको हो गया है हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये सारा देश के खाने पीना, ये विवाहों के अंदर बेकार का इतना खर्चा, ये कार्ड 500 रुपये का छपते, 500 रुपये का कार्ड है किसी काम का नहीं है, दूसरे दिन फेंक देते हैं लोग, क्या करेंगे उस कार्ड को लोग घर में रख के, खर्चा करने की जरूरत क्या है। अपनी कन्या को देना चाहिए, उसका अधिकार है चल प्रॉपर्टी में, अचल तो बेटे को मिलती है, जो चल है उसमें कन्या का अधिकार है। जो भी हो, अब वहां इनको बड़ा सम्मान के साथ यदुवंशियों को रखा गया, और रुक्मणी तो बड़ी चिंता में थी। ब्राह्मण पहुंचा, उसका अच्छे शोकन लगे, वाम भाग फरकने लगा, ब्राह्मण ने कहा कृष्ण आ गया है। अब तो वो लक्ष्मी थी, ब्राह्मण को अगर कुछ दे दिया होता, लक्ष्मी ने कहा नमस्कार ब्राह्मण, अच्छा काम किया है आपने, कल्याण हो गया। ब्राह्मण तो बेचारा आशीर्वाद दे के चला गया, और रुक्मणी ने लिखा था कि आपको अगर ये लगता है कि आप मेरा कैसे अपहरण करोगे, तो मैं कुछ बड़ी उम्र की ब्राह्मणियों के साथ देवी की पूजा करने के लिए जाती हूँ कौंडिन्यपुर में, उस वक्त आप मेरा अपहरण कर सकते हैं। और भगवान से और यहां जरासंध ने कहा उस रास्ते के दोनों तरफ सेना, सारी सेनाएं खड़ी कर दो, और सब वीर पुरुष खड़े हो, कहीं से भी ये यदुवंशी कहीं हमारा रुक्मणी का अपहरण करने, और बड़ी व्यवस्था हो गई। रुक्मणी तो जा रही है पूजा करते हुए, पंडित जी कह रहा है कि गणेश को नमस्कार करो, वो कहती है हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण पति के रूप में मिले, हे शंकर गणेश गौरी आपको प्रणाम है, लेकिन पहले कहे कृष्ण पति रूप में मिले, वो तो आस्ते कहे फिर बोल दे ऐसे, और बाहर निकली है और पहली बार कृष्ण को देखने के लिए आंख उठाई है, और उसकी सुंदर कार्त को इतनी सुंदर थी कि देखते हुए सारे सैनिक जो हाथी घोड़ों के बैठे हुए हस्त्र शस्त्र गिर गए, मूर्छित होके बेर की तरह और नीचे गिरने लगे, बेर से बेर नीचे पक्के हुए बेर को हिलाए गिरते हैं, आम गिरते हैं। और इतनी देर में कहीं से कृष्ण का रथ आया, और रुक्मणी को हाथ से पकड़ के रथ में बिठाया, और रथ निकला है। अब सब चपेत हो चकित हो के अरे 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 ऐसा हमारे बीच में से क्या हुआ, गीदड़ों के बीच में से शेर अपना शिकार लेके चला गया। रुक्मणी कहती अब पीछे क्या होगा, कृष्ण कहते चिंता मत करो भैया है बलराम, यदुवंशी है पीछे देख लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए उन्होंने अस्त्र उठाया, यदुवंशियों ने मार भगाया, सबने कहा हम तो बाराती थे, खाने आए थे, लड़ने थोड़ी आए थे, सब रवाने हो गए। शिशुपाल कहता है जरासंध मेरा क्या होगा, जरासंध कहता चिंता मत करो, मैं भी 17 बार हारा था, कभी हारते हैं हम भी इनके साथ, बाद में बदला ले लेंगे। रुक्मी ने कहा कि देखो मैं जाके अपनी बहन को वापस नहीं लगाया लाया तो मैं वापस यहाँ विद्रभ देश कौंडिन्यपुर नहीं आऊंगा। रुक्मी पीछे भागा है और कृष्ण के पास पहुंचा है, मुंह से गालियां दे रहा है, अस्त्र शस्त्र चला रहा है। भगवान ने पीछे मुड़ के रथ को, हसारथी को मारा, धनुष को तोड़ा, वो तलवार लेके आगे आया, तलवार गिराया, भगवान ने उसको पकड़ के एक तरफ का मुंह से एक तरफ की दाढ़ी आधे बाल काटे, और रुक्मणी से ही कपड़ा लिया दुपट्टा और उसको रथ के अंदर बांधा। रुक्मणी का इसको मारना मत, नहीं नहीं साले को मारते नहीं है, बैठा है तब तक तो बलराम सबको मार के आए, और बलराम ने बैठा ये तो बड़ा ये साले बड़े साले को बांध के रखा है और इसको कुरूप कर दिया है। अब बलराम बड़ा है ना, कहते कन्हैया तुम्हारे यदुवंश में ऐसी परंपरा नहीं है, तुमने अपने साले के साथ भद्र व्यवहार नहीं किया है, अच्छी बात नहीं किया है। और फिर रुक्मणी की ओर कहता है देवी क्षत्रिय का धर्म बहुत बड़ा भयानक होता है, भाई भाई को मारता है, अब क्या कर सकते हैं युद्ध में ऐसे होता है। और फिर कन्हैया को कहता है छोड़ दो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस रुक्मी को अब बलराम छुड़ा रहा है और आगे विवाह में जब जाएगा तो इसी रुक्मी को स्वयं ही सर के ऊपर गदा से मारेगा। बलराम ने मारा है बाद में रुक्मी को, ऐसे शांत करके घर लाए हैं। पहला विवाह गंधर्व विवाह है, प्रेम की चिट्ठी। दूसरा अपहरण का, इसको राक्षस विवाह बोलते हैं। फिर माधवपुर, समुद्र के किनारे के स्थान है माधवपुर, वो तो उस वक्त द्वारका बहुत लंबी थी जो अब चली गई है। वहां भगवान कृष्ण का और रुक्मणी का पाणी ग्रहण संस्कार वेद विधि से हुआ है। तब महाराज भीष्मक ने जाके उधर कन्यादान किया है, और रुक्मणी के विवाह के बाद जो समंतक मणि के माध्यम से जामवती के साथ विवाह हुआ है, और फिर सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा को कृष्ण को विवाह के दिया है। तीन विवाह हुआ, चौथा विवाह भगवान राजसूय यज्ञ के समय आ रहे हुए थे मथुरा में, और कालिंदी को अर्जुन को कहा देखो कौन कन्या बैठी है। अर्जुन ने कहा हे देवी कौन हो, किसके लिए तपस्या कर रही हो। बोला कृष्ण को पति के रूप में वरण करना है। कृष्ण ने कहा ले आओ, ऐसे कालिंदी चार रानियां हो गई। मित्राविंदा को उज्जैन से लाए अपहरण करके, लक्ष्मणा को दक्षिण भारत से अपहरण करके लाए, नांगन जीती के लिए सात बेलों को वश में किया और बड़े देश के साथ लाए, और फिर सत्या को ये आठ पटरानी हो गई। अब एक संदेश आता है इंद्र का, मेरी मां आदिति के कुंडल ये भौमासुर लेके चला गया है, वरुण का छाता लेके चला गया है, हमारे स्वर्ग के कुछ धरती के ऊपर इसने कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया। तो भगवान सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ के ऊपर चढ़ के ओ प्रागिच ज्योतिषपुर, ये आसाम में है, आसाम में प्रागिच ज्योतिषपुर है, वहां पहुंचे हैं। बड़ा सुरक्षा का व्यवस्था है, जल की सुरक्षा की व्यवस्था, फिर अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था, वायु की सुरक्षा की व्यवस्था। तो भगवान ने सबका सुदर्शन चक्र से भेदन किया है, मूरा नाम का राक्षस है उसको मारा है, भगवान का नाम मुरारी हुआ है, फिर भौमासुर के साथ युद्ध हुआ और भौमासुर के ऊपर भगवान ने विजय प्राप्त की है। सत्यभामा को साथ इसलिए ले गए थे क्योंकि पृथ्वी सत्यभामा की अंश से उत्पन्न होती है, उसके पुत्र को मारना है भौमासुर को। तो जब वो कहेगी, जब कहा सत्य भामा ने इसको मारो, तब मारा भगवान ने, उसके आदेश से मारा। और उसके बाद उसके कैद में 16,100 राजाओं की राजकन्याएं उसने अपहरण करके रखा था कि इतनी सबके साथ विवाह एक साथ करूंगा। सब उनको भगवान ने उनको जब मुक्त कराया तो सबने कहा भगवान अब समाज में हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा सच कोई नहीं स्वीकार करेगा, तो अब इस वक्त की व्यवस्था में मैं बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशनरी एक्शन लेता हूं, मैं एक बहुत बड़ी क्रांति करता हूं, आप सबको सजा धजा के यहां से द्वारका भेज दो, और आपको कोई नहीं लेता है तो आप सबको मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने सबके लिए महल बनाए और 16,100 रानियों को, जो ये थी राजकुमारियां जिसको समाज नहीं स्वीकार कर रहा था, भगवान ने उनको स्वीकार करके द्वारका में विराजमान किया। फिर भगवान सत्यभामा के साथ चले गए स्वर्गलोक में। इंद्र को आदित्य उसकी मां के कुंडल दिए, वरुण का छाता दिया। सत्यभामा ने कहा ये पारिजात का मेरे को पेड़ चाहिए। भगवान ने पेड़ उठाया और इंद्र लड़ने के लिए आया, और इंद्र के साथ भगवान की दोबारा लड़ाई हुई और फिर पराजित हुआ। इसके बाद अभी हमारा समय समाप्ति की ओर आ रहा है, एक सुधामा विप्रा की कथा करने के बाद 11वें-12वें स्कंद को हाथ लगा के समाप्ति करते हैं। कथाएं तो बहुत अद्भुत हैं और हैं भी अनंत, भगवान अनंत, भगवान की कथा लीला अनंत है। पोरबंदर जो आज बंदर, बंदर का मतलब ही होता है समुद्र के किनारे के ऊपर एक स्थान पोरबंदर है, वहां सुदामा ब्राह्मण रहता था, कृष्ण का सहपाठी था, उज्जैन में सांदीपनि मुनि के पास पढ़ा था, उसकी पत्नी सुशीला और बालक थे, ब्राह्मण था, वेदज्ञ ब्राह्मण था, मन शांत था, इंद्रियों के ऊपर संयम था और शांत चित्त था, और अयाचक वृत्ति से रहता था, कहीं से मांगता नहीं था, जो अपने आप भगवान की इच्छा से आ जाए उससे आपका। अब प्रारब्धवश ब्राह्मण के घर में इतना ज्यादा साधन नहीं था। एक दिन सुशीला ने कहा कि पतिदेव बच्चों के लिए भोजन वस्त्र का अभाव होता जा रहा है। आपका मित्र द्वारकाधीश है, आप चले जाएंगे तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, हमारे दिन बदल जाएंगे। सुदामा ने कहा, मांगने के लिए जाऊं ये तो मेरा ब्राह्मण का धर्म नहीं है, लेकिन कन्हैये को देखे को बहुत दिन हो गए, इस बहाने कन्हैये का दर्शन हो जाएगा। और फिर सुशीला ने कहा, अरे लोग तो किसी को कुछ देते हैं, कन्हैया तो इतना उधार है अपने आप को ही दे देता है, तो बहुत बड़ा उधार है, अपने आप को दे देता है। कहा कि जाऊंगा मित्र से मिलने के लिए, कुछ भेंट तो लाओ कहीं से। भाग भरी ने घर में देखा कुछ नहीं था, चार घरों से तंदुल, कहीं से लाल कहीं से पीला कहीं से छोटा कहीं से मोटा, और एक पोटली में बांध के दिया जिसमें सुदामे की गरीबी का पूरा इतिहास लिखा था। सुदामा पैदल चला है, वो तो समुन्द्र के मार्ग से द्वारका के पास पहुंचा है। द्वारपालों ने कृष्ण को कहा, सुदामा आया है, और कृष्ण रुक्मणी के पलंग से दौड़ के भागे हैं, ओतरी रास्ते में गिरी है और दोनों भुजाओं में भर के कहते हैं, अरे भैया मेरे मित्र, इतना दिन तुमने आने में लगा दिया, प्रतीक्षा कराई। भगवान आलिंगन करके उसी के सिंहासन के ऊपर, पलंग के ऊपर बिठाया है, स्वयं चरणों में। अब तो रोचक कथा करने के लिए कुछ कथाकार कहते हैं, दूसरे दिन जब पता लगा सब रानियों को कि अकेली रुक्मणी को सौभाग्य प्राप्त हो गया ब्राह्मण की सेवा का, वो पंखा झेल रही है, वो घर से थाली के अंदर पेड़ा रखा और फूल रखे और चंदन रखा और अब ब्राह्मण की पूजा के लिए आने लगी। तो पहले सत्यभामा ने एक पेड़ा दिया, ब्राह्मण ने पाया, फूल दिया, कहा पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। फिर आई जामवंती, उसको आशीर्वाद दिया, आठ के बाद गला थोड़ा सूखने लगा। फिर जब 15 आई तो कहा भो भो, पूछा कितनी है, बोला बाकी 16,000 है। अब ब्राह्मण इतना क्या करेगा। तब भगवान ने कहा, देखो सुदामा, तुम मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दो, ये सब सुखी हो जाएंगी, आप इसकी चिंता मत करो। इससे सिद्धांत ये स्थापित होता है, एक भगवान को संतुष्ट करने से सब अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन जब सुदामा विदा होने लगा तो जिन कपड़ों में आया था उसी कपड़े में वापस पैदल जाने लगा। भगवान ने कोई व्यवस्था नहीं की, बोला ऐसे क्यों किया कन्हैया ने, बोला लोग कहेंगे ब्राह्मण लालची था, कुछ कन्हैया से लेने गया था, मेरे मित्र के ऊपर कोई उंगली न उठाए, और दूसरा इस ब्राह्मण के चरण मेरी द्वारका नगरी में पड़ेंगे तो मेरी द्वारका नगरी सदा हरी भरी रहेगी, बसी रहेगी, इसलिए। और बाहर जाते हुए सुदामा कहता है, और अजी सुदामा जाने से पहले जो लीला हुई वो तो भूली जा रही है समय देखकर। अब दूसरे दिन मांगा नहीं कुछ भी सुदामा ने, कन्हैया ने कहा इसकी पत्नी ने भेजा तो मांगने के लिए, ये मांगेगा ही नहीं, ये तो ऐसा ब्राह्मण अयाचक कभी मांगता नहीं। अब कन्हैया कहता है कि मेरे लिए क्या लाए हो मित्र, अरे कुछ तो भेंट लाए होगे ना, नहीं कुछ नहीं, अब तो देखा द्वारका का वैभव और फटे कपड़े के अंदर चार के प्रकार का चिवड़ा, उसको बड़ा संकोच होने लगा। और भगवान ने झपट के उसकी कांख से पोटली को निकाल ली और निकाल के एक मुट्ठी भर के खाया। अब दूसरी मुट्ठी भरने लगे तो लक्ष्मी देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ के कहा, स्वामी प्रसाद हमको भी दीजिए, इस ब्राह्मण का इतना खाएंगे तो हम कहां रहेंगे, इसके बदले में तो इसको वैकुंठ मिल गया पूरा। हाथ जब पकड़ लिया है, सुदामा मांग लेता तो सुदामे का नाम भागवत में नहीं होता, सुदामा अयाचक ब्राह्मण है। ऐसा अयाचक ब्राह्मण गोविंद कुंड में बैठा था माधवेंद्रपुरी, 3 दिन हो गए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध का लोटा लेकर लठिया लेकर कहा, बाबा आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरी मैया ने दूध भेजा है। अरे बालक कैसे मैंने नहीं खाया, बोला मैया पानी भरने आती हैं, कहती हैं कि आप कहीं गए नहीं हो, किसी के घर से मधुकरी लाए नहीं हो। दूध पिया, वही बालक कहता है इन झाड़ियों में मैं पड़ा हूं, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो। माधवेंद्रपुरी ने गांव वालों को बुलाए और जैसे खोला तो जो नाथ द्वारे में ठाकुर जी है वहां से प्रकट हुए, कहा मैं तुम्हारी सेवा, मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम कब मुझसे आओगे, मेरी सेवा करोगे। तो भगवान साक्षात जो नहीं मांगता है उसके व्यवस्था अपने आप करते हैं। कन्हैया तो इतना बड़ा उधार है, जिसके पास नहीं है योग क्षेमम वहामि अहम्, उसके पास नहीं है उसको मैं कंधे के ऊपर उठा के ला के दे देता हूं। सो आज सुदामा जब वापस जा रहा है तो कहता है, अच्छा है मेरे मित्र ने कुछ नहीं दिया, दिया होता तो मैं हो सकता है कि लोभ लालच में पड़ जाता, लेकिन घर पहुंचा है तो अपना घर पहचान नहीं रहा है। और उसकी पत्नी सुसज्जित होकर आरती करने के लिए आई तो कौन हो देवी? अरे बोले सुशीला तुम्हारी पत्नी हूँ। बोला ये किसका घर है? बोला ये महल हमारा है। तो बाहर ही खड़े है कि सुदामा हाथ ऊपर करके कहता है, अरे गोविंद तुम्हारे हजार हाथ हैं, तुम जब देते हो तो कोई देखता नहीं है। जैसे रात को बरसात पड़ती है और सुबह लोग उठते हैं तो चारों ओर हरियाली हो जाती है, ऐसे भगवान अदृश्य रूप से तुमने क्या दिया है। गोविंद हमारा तो धन आप ही है, ये तो दुनिया को दिखाएंगे। गोविंद जब किसी का प्रालब्ध बदलना चाहता है, देखो किसी का प्रालब्ध कर्म होता है कोई नहीं बदल सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति में ये शक्ति है और भगवान उसका प्रालब्ध भी तत्काल बदल देते हैं। आज ये सुदामा की लीला प्रालब्ध कर्म भगवान की कृपा भक्ति से बदलते हैं, इसका अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद ऐसे कथा आती है कि भगवान शंकर के भक्त तो बहुत सुखी खुश होते हैं, गोविंद के भक्त तो लगता है कभी खाते हैं, हाँ कभी मुट्ठी भर चना और कभी बहुत बड़ा भंडारा और कभी वो भी नहीं होता है। तब कथा में ये कथा का उदाहरण देते हैं, सुदामा को जितना दिया इतना तो आज किसी ने कभी किसी को नहीं दिया है। और फिर वृकासुर की कथा आती है, शंकर भगवान की पूजा करता है वृकासुर और शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बोला वरदान क्या चाहिए? बोला जिसके सर के ऊपर हाथ रखूं उसका सर फूट जाए। और ये वरदान दिया तो पार्वती साथ खड़ी थी, उस वृकासुर के मन के अंदर कुभाव आया